महात्मनः, जो वास्तव में महान है। शांतस्य, शांत। समचित्तस्य, समदर्शी का। विब्रुयात, ऐसे प्रतीक स्वीकार कर लें। उत, निस्संदेह वा अथवा। त्यजेत, त्याग दे। तो इस सातवें अध्याय के, सातवें स्कंद के 13वें अध्याय का शीर्षक है सिद्ध पुरुष का आचरण, और उसमें नवा श्लोक का अनुवाद हम प्रभुपाद द्वारा लिखित पढ़ रहे हैं। ऐसा शांत समदर्शी व्यक्ति जो आध्यात्मिक चेतना में सचमुच बड़ा चढ़ा है, उसे सन्यासी के प्रतीकों मतलब त्रिदंड और कमंडल को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो आवश्यकता अनुसार इन प्रतीकों को कभी धारण कर सकता है तो कभी छोड़ सकता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सन्यास आश्रम की चार अवस्थाएं हैं, कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य और परमहंस। यहां पर परमहंसों की गणना सन्यासियों में की गई है। मायावादी निर्विशेषवादी सन्यासी इस परमहंस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते। इसका कारण परम सत्य विषयक उनकी निर्विशेष धारणा है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का अनुभव तीन अवस्थाओं में किया जाता है, जिनमें भगवान अर्थात भगवान की अनुभूति परमहंसों के लिए है। निस्संदेह श्रीमद् भागवतम स्वयं ही परमहंसों के निमित्त है। परमो निर्मत सराणाम सताम। जब तक कोई परमहंस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक वो श्रीमद् भागवत के को समझने का अधिकारी नहीं होता। वैष्णव संप्रदाय में परमहंसों या सन्यासियों का प्रधान कर्तव्य धर्म प्रचार है। धर्म उपदेश करने के लिए ऐसा सन्यासी दंड तथा कमंडल जैसे सन्यास प्रतीक धारण कर सकता है, और कभी उन्हें भी कभी उन्हें नहीं भी धारण करता है आवश्यकता के अनुसार। सामान्यतया वैष्णव सन्यासी परमहंस होने के कारण स्वतः उनको बाबा जी कहलाते हैं और वे दंड या कमंडल धारण नहीं करते। ऐसा सन्यासी सन्यास के प्रतीकों को धारण करने या ना करने के लिए स्वतंत्र है। उसका एकमात्र विचार यही होता है, मुझे कब कृष्ण प्रचार करने का मौका मिलेगा। कभी कभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन अपने प्रतिनिधि सन्यासियों को विदेश भेजता है, जहां दंड और कमंडल को अधिक पसंद नहीं किया जाता। तब हम अपने धर्म प्रचारकों को अपनी पुस्तकों तथा दर्शन का परिचय कराने के लिए सामान्य वेशभूषा में भेजते हैं। हमारी एकमात्र चिंता कृष्ण भावनामृत को कृष्ण भावनामृत के प्रति लोगों को आकृष्ट करना है। इसे हम सन्यासी की या भद्र रूप पुरुष की वेशभूषा में प्रवेश कर सकते हैं। हमारा एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत में रुचि को प्रसारित करना है। या फिर दो वाक्य इंग्लिश में पढ़ते हैं, वी मे डू दिस इन द ड्रेस ऑफ अ सन्यासी और इन द रेगुलर ड्रेस ऑफ अ जेंटलमैन। आवर ओनली कंसर्न इज टू स्प्रेड इंटरेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसका इंग्लिश में अनुवाद पढ़ते हैं, अ पीसफुल एंड इक्विपॉइज्ड पर्सन हु इज फैक्चुअली एडवांस्ड in spiritual consciousness does not need to accept the symbols of a sannyasi such as tridents or kamandalu. According to necessity he may sometimes accept those symbols or sometimes reject them. Is adhyay ke shuruaat mein Prabhupada ji ne sankshep mein is adhyay ka saransh bhi likha hai, usko bhi padh lete hain, bahut mahatvapurna hai. Adhyay 12 mein varnashram ke bare mein नारद मुनि जी वर्णन करते हैं, और इसको जरा और अभी इस 12वें अध्याय में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ इनका वर्णन करने के पश्चात इसमें सन्यास का वर्णन दिया गया है। इस अध्याय में सन्यासियों के लिए अनुष्ठान दिए गए हैं और अवधूत के इतिहास का वर्णन भी हुआ है। नारद मुनि विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों का वर्णन करते चले आ रहे हैं। अब इस अध्याय में वे सन्यासियों का द्वारा पालित होने वाले अनुष्ठानों का विशेष वर्णन करते हैं। गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को वानप्रस्थ पद का स्वीकार करना चाहिए, जिसमें पहले इस शरीर को अपने अस्तित्व का साधन मानकर धीरे धीरे जीवन की शारीरिक अवस्थाओं को भूल जाना चाहिए। वानप्रस्थ जीवन के पश्चात घर छोड़कर सन्यासी रूप में विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना चाहिए। शारीरिक सुख के बिना तथा किसी भी अधीनता स्वीकार किए बिना उसे प्रायः कुछ भी पहने या अर्थात नग्न घूमना चाहिए। उसे मानव समाज के संपर्क में आने बिना भिक्षा मांगकर आत्मसंतुष्ट रहना चाहिए। उसे हर जीव के मित्र होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में अत्यंत शांत रहना चाहिए। सन्यासी को अकेले विचरण करना चाहिए और जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करना चाहिए। उसे न तो अनावश्यक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, न ज्योतिष जैसा व्यवहार व्यवसाय ग्रहण करना चाहिए, न ही उसे वक्ता बनने का यत्न करना चाहिए। उसे व्यर्थ का तर्क वितर में भी सहभाग लेना नहीं चाहिए और न किसी परिस्थिति में किसी पर आश्रित रहना चाहिए। उसे अन्यों को अपना शिष्य बनाने का प्रलोभन भी नहीं देना चाहिए। उसे जीविका के रूप में तमाम पुस्तकें पढ़ने की आदत को छोड़ देना चाहिए, यानी कि भगवान की पुस्तक पढ़कर उसका प्रवचन देकर पैसे कमाने का जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं मंदिरों तथा मठों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र शांत और समभाव बन जाता है तो वो मृत्यु के बाद मनोवांछित स्थान को प्राप्त कर सकता है। विद्वान होने पर भी उसे सदैव गूंगे के समान मौन बने रहना चाहिए और चंचल बालक के भांति विचरण करते रहना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथांवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविधाकांवितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सन्यास के बारे में यहां पर वर्णन हो रहा है और परिस्थिति का विरोधाभास यह है कि यहां पर कोई सन्यासी नहीं है, सब लोग गृहस्थ हैं। लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम में जो भी कहा गया है वो सबसे नौसिखिया भक्तों से लेकर परमहंसों के लिए भी उसमें योग्य वर्णन दिया गया है। जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो भागवतम है इसको परमहंस संहिता कहा गया है। परमहंस संहिता केवल परमहंसों के लिए ही इसमें से रसास्वादन करना मुमकिन है, ऐसा ही वर्णन है। लेकिन फिर भी इसकी ये परिपूर्णता की खूबी ऐसी है कि जो नए से नए आदमी है जिसको भगवान की प्रताप जानकारी भी नहीं है, उसको भी इसमें से ज्ञान अनुभूति और प्रगति के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को पढ़ते हुए कोई भी भाग को ऐसे क्या कहते हैं उसको एग्जेम्पशन नहीं करना चाहिए, हाँ ऑप्शन डालना नहीं चाहिए। हम परीक्षा में क्या करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं अच्छी तरह से और कुछ चैप्टर छोड़ देते हैं, वैसे श्रीमद् भागवतम में नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा अध्याय सन्यासी को पर दिया गया है कि सन्यासी को कैसे वर्णन करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। और ये बहुत ही पवित्र वर्ष भी है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के सन्यास लेने की जो विधि है उसकी 500वीं वर्षगांठ है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वर्ष जो है। ये चैतन्य महाप्रभु के भावना को, उनके करुणा को समझने का वर्ष। चैतन्य महाप्रभु ये सबसे श्रेष्ठ सन्यासी है। भगवान स्वयं जब आकर सन्यास का व्यवहार कैसे करना चाहिए वो अगर बताने लगेंगे तो उनसे बढ़कर कौन शिक्षा दे सकता है सन्यास के बारे में। और चैतन्य महाप्रभु की ऐसी अवस्था थी कि उनको इतनी सुंदर पत्नी, सद्गुण संपन्न, जो स्वर्ग की देवियां भी उनके सामने कुछ नहीं है, ऐसे गुण थे उनके अंदर, ऐसा पातिव्रत था, ऐसे समर्पण था, ऐसे प्रेम था, ऐसे आज्ञा पालनता थी, ऐसे नम्रता थी, हर प्रकार से विष्णु प्रिया देवी जो है वो सर्व संपन्न थी। और यशोदा माता की अवतार सची माता उनकी माता थी, इतना वात्सल्य उनके मन में था श्री निमाई के प्रति। जगन्नाथ मिश्रा जो नंद महाराज के अवतार हैं वो उनके पिताजी थे, इस प्रकार का परिवार था उनका। और श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य और ऐसे कई अनंत भक्तों का उनको संग था। फिर भी गुरु महाराज बताते हैं, वैष्णव बताते हैं कि आम जनता जो भौतिक दुनिया में बद्ध है और इस दुनिया में कष्ट भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु की यात्रा में फंसे हुए हैं, ऐसे आम आदमी तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपना सुंदर गृहस्थ जीवन को त्याग कर दिया। बड़ी कठिन बात है, वो भी कौन सी अवस्था में, 24 साल के पूर्ण युवा अवस्था में, जब उनका शरीर अनंत कामदेवों जैसा सुंदर था, आकर्षक था, उनके सुंदर घुंघराले बालों को देखकर लोग बेहोश हुआ करते थे कृष्ण प्रेम के आविर्भाव के कारण। उनका सौंदर्य जो है वो स्वर्ण कांति थी उनकी, हजारों सूर्यों के समान चमकते हुई उनकी शरीर की कांति थी, जिसके अभाव इतनी प्रकाशमान थी, उनकी आंखें कमल जैसे थी, ऐसा उनका सुंदर वर्णन है। तो ऐसे सुंदर अवस्था को और सुंदर गृहस्थ जीवन को, सुंदर प्रेममयी अवस्था को छोड़कर उन्होंने जीवों के बारे में सोचा जो इस विश्व में दुख भोग रहे, और सब कुछ छोड़कर उन्होंने अपना घर त्याग दिया। और वहां से रात के समय वो निकले घर से, उनकी माता दरवाजे पर खड़ी है और पुकार रही है, क्यों जा रहे हो, ये जो जीवों का उद्धार करना है तो वो गृहस्थ जीवन में रह के भी कर सकते हो, ये संकीर्तन जो तुम फैलाना चाहते हो यहां से भी कर सकते हो, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, माता पत्नी दोस्त मित्रगण इनके बीच में रहकर भी आप ये प्रचार कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम सबके कल्याण के लिए, हाँ हम सबके वास्तव में हम सबके उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु ने इतना बड़ा त्याग किया। और बीच रात में वो संन्यस्त अवस्था में, मतलब विरक्त भावना में घर छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो दिन में अगर ये करते काम तो हजारों नवद्वीपवासी उनके पीछे भागते, रोते, गिड़गिड़ाते, बेहोश होते, क्या क्या नहीं करते उनको रोकने के लिए, जैसे गोपियों ने कृष्ण भगवान को रोका था मथुरा जाने के समय। इसलिए रात रात में वो गंगा जी में कूद पड़े और गंगा जी का विशाल पात्र वो तैरते हुए रात रात में चले गए, कंटक नगर में गए, जो आज हम जानते हैं कटवा के रूप में। और वहां पर वो उन्होंने केवल 5 भक्तों को बताया था, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और कुछ भक्तों को बताया था, हरिदास ठाकुर। तो वहां पर जाकर वो कंटक नगर में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, केशव भारती महाराज। और वहां पर जब लोगों को पता चला कंटक नगर में कि केशव भारती महाराज इनको संन्यास देने वाले हैं, तो वो संन्यास जो देने वाले महाराज थे उनके प्रति उनका बहुत आदर था पहले, बहुत ही सम्मानजनक उनका व्यवहार था उनके प्रति। लेकिन जैसे उनको पता चला कि इनके ये संन्यास देने वाले हैं, उन्होंने कहा कि आपके घर को उखाड़ के हम जमुना गंगा जी में फेंक देंगे अगर आप इनको संन्यास देंगे तो। बड़ी दुविधा में आ गए वो, फिर भी चैतन्य महाप्रभु निश्चय पर अटल रहे, उन लोगों को समझाने का प्रयास किया। जब ये जो वाद विवाद था वो बहुत भयंकर अवस्था में आया, मतलब लोग इतने क्रोध में आ गए और सन्यासी भी एकदम विचलित हो गए, दुखी हो गए, क्या करना है अभी। उस समय परिस्थिति को शांत करने के लिए तुरंत महाप्रभु चैतन्य ने कीर्तन करने का आदेश दिया और ऐसा सुंदर कीर्तन किया कि सब लोग अपने वाद विवाद को भूल गए। उसी के बीच में तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास कीर्तन के बीच में अपने भक्तों को बुलाकर कहा, तुरंत नाई को लेके आओ, तुरंत मेरे बाल कटवाने की व्यवस्था करो, तुरंत संन्यास के विधि की व्यवस्था करो, यज्ञ की व्यवस्था करो, और झट झट से यह व्यवस्था करके लोगों के भावना जो भी कृष्ण भावना में लीन थी उस समय उन्होंने सब कुछ व्यवस्था करके तुरंत अपने आप को पेशवपन कराया। लेकिन जब वो नाई सामने आया तो नाई काट नहीं सका उनके बाल, कई नाइयों ने नकार दिया। तब जाकर आखिर नाई को जो है वो हाथ कांपते हुए ऐसे गदगद होकर उन्होंने भगवान के बालों को सर से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके आगे मैं किसी के बाल नहीं काटूंगा, मैं मेरा पेशा छोड़ दूंगा, और किसी अन्य व्यवसाय को उसने अपना लिया। भगवान के बालों की समाधि वहां बनाई गई और फिर भगवान ने केशव भारती महाराज के कान में मंत्र बोला जो उनको उनको देना था, और चैतन्य महाप्रभु के लिए फिर केशव भारती महाराज ने उसी मंत्र को दोहराया उनके कान में। और इस तरह से अनंत सूर्यों के प्रकाश से जैसे प्रभावित होते हैं वैसे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन जो है प्रगल्भ सबको दर्शन नजर में आया, और उसी समय वो वृंदावन की ओर जाने लगे। कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, कृष्ण को मिलना चाहता हूँ, और जो जो उनको मिले उन्होंने कृष्ण भावना भावित कर दिया। जब वो आगे भागने लगे सब उनके पीछे भागने लगे कृष्ण भावना के आवेश में। तो ये चैतन्य महाप्रभु का संन्यास जो है ये हम सब जीवों के उद्धार के लिए, और जो मंत्र चैतन्य महाप्रभु को या किसी संन्यास को दिया जाता है वो ऐसा मंत्र है जो श्राद्ध का मंत्र होता है। जैसे हमारे समाज में, हमारे जाति के समाज में, हमारे गांव में जो भी भगवान का भक्ति का समाज है उसमें सन्यासी का सन्यास लेने के पहले श्राद्ध कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सन्यासी जो होता है वो विश्व के लिए मृत हो जाता है, ही इज डेड फॉर सोसाइटी। जैसे शरीर से वो समाज के लिए मृत हो गया, उसका सन्यास का मतलब है वो श्राद्ध भी उसका हो जाता है। उसके बाद में वो अगर जीवित है तन मन धन से या किसी काया वाचा मन, उसका संन्यास दंडा के अंदर तीन दंडे होते हैं, तीन लंबे दंडे को एक साथ में बांधते हैं और एक छोटी डंडे को ऊपर से बांधते हैं। तो तीन जो डंडे हैं वो त्रिकंड त्रिदंडी कहते हैं उसको, एक दंडा काया मतलब शरीर, एक दंडा मन मन के लिए, एक दंडा वाचा यानी कि वाणी के लिए, और चौथा जो है वो जीव। तो ये काया वाचा मन जो है तीनों से सन्यासी अपना जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित करता है। और मायावाद का जो सन्यासी दंड होता है वो एक दंड होता है, उसका अर्थ क्या होता है कि हमको भगवान से एक रूप हो जाना है, इसलिए हम एक दंड को स्वीकार नहीं करते। हम व्यक्ति हैं, भगवान भी व्यक्ति है, हम भगवान से अलग है, भगवान परम व्यक्ति है, हम अनुव्यक्ति हैं, और हमारे काया वाचा मन से हमको भगवान को समर्पित करना है, ये वैष्णव संन्यास का मतलब होता है। और वो जो जीव जो है वो जीव भी अपने काया वाचा मन के साथ में भगवान को अपने आप को अर्पण कर लेता है, मतलब उसका अस्तित्व रहता है लेकिन उसके अस्तित्व की जो भी शक्ति है, जो भी अस्तित्व का महत्व है, वो पूरी तरह से भगवान में सेवा में लीन है। भगवान सेव एक रूप नहीं हो जाता है, उसकी भावना जो है, उसकी चेतना जो है वो भगवान से एक रूप हो जाती है, वो सही संन्यास है। और चैतन्य महाप्रभु के गृहस्थ जीवन में कई सन्यासी ऐसे थे, कई गृहस्थ ऐसे थे जो सन्यासी हुए बढ़कर थे। हाँ, पहले हम उनका चर्चा करेंगे फिर बाद में उनके सन्यासियों का चर्चा करेंगे। श्रीवास ठाकुर थे, हाँ श्रीवास ठाकुर इतने सुंदर गृहस्थ थे, इतने क्या कहते हैं उसे उदाहरणीय गृहस्थ थे कि उनको चैतन्य महाप्रभु ने एक बार पूछा उनके व्यवहार को और उनके गृहस्थ जीवन को देखकर कि हे श्रीवास, तुम तो मुझे कभी धन कमाते हुए नजर नहीं आते, और हर बार तुम्हारे घर में प्रसाद का वितरण होता है, कीर्तन की व्यवस्था होती है, भक्त लोग इकट्ठा होते हैं, तुम उनको नाना प्रकार के व्यंजन भेंट देते रहते हो, ये धन आता कहाँ से? तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा उन्होंने। उस समय आचार्य श्रीवास आचार्य जो हैं, श्रीवास पंडित, उनको जवाब देते हैं कि हे महाप्रभु जी, मैं 3 बार ताली बजाता हूँ, 1, 2 और 3, हाँ, और 3 बार ताली बजाने के पश्चात मेरे पास अगर मुझे जो धन चाहिए वो नहीं आता है तो मैं गंगा जी में अपने आप को छलांग लगाकर जान दे दूंगा। तो सैतन महाप्रभु इतने प्रभावित हो जाते हैं, हाँ, क्या श्रद्धा है उनकी, ये श्रद्धा जो है ये इनका धन है पूरा, निष्ठा कि मैं अगर भगवान की सेवा में समर्पित हूं तो मैं 3 बार ताली बजाऊंगा। हम लोग कहेंगे अच्छा है, हम भी ताली बजाएंगे, हाँ, सब लोग मंदिर में रहेंगे, कुछ गृहस्थी को देखेंगे नहीं, ताली बजाएंगे धन आता रहेगा, नहीं नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अंदर उतनी श्रद्धा और समर्पण नहीं है, इन बातों का अनुकरण नहीं कर सकते हम। उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि उनकी श्रद्धा जो है, उनका निष्ठा जो है वो इतने ऊंचे स्तर पर है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या जवाब देते हैं उसका, कि आपको, आपकी श्रद्धा को, निष्ठा को देखकर मैं इतना प्रभावित हूं कि मैं आपको ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक समय ऐसा आएगा अकाल पड़ने पर, समझो आ गया, ऐसे आता है भविष्य में, तो लक्ष्मी देवी जो पूरे विश्व का इकोनॉमिक्स चलाती है, अर्थ कारण चलाती है, वो लक्ष्मी देवी स्वयं अपने हाथ में कमंडल भिक्षा का लेकर भिक्षा मांगती हुई फिरेगी, लेकिन उस समय भी आपके घर में कोई कमी नहीं होगी, ऐसा उसको उनको वरदान देते हैं, उनके बारे में कहते हैं। जय हो श्रीवास पंडित आचार्य की, ये श्रद्धा होनी चाहिए। कितना बड़ा आशीर्वाद दिया उनको उन्होंने, और कितना बड़ा गौरव किया कि साक्षात लक्ष्मी जो भगवान की अनंत धन से सेवा करती है, वो भी अगर भिक्षा भिखारी या भिक्षुक बन जाए तो भी श्रीवास पंडित के घर में कोई कमी नहीं होगी। ऐसे ही थे, ये तो गृहस्थ है, अच्छे बालक है उनके घर पे, लेकिन इनका समर्पण कैसे था, कैसा विरक्त था उनका, जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उनकी बालक की मृत्यु होती है, पुत्र का देहांत होता है, अंदर जाके स्त्रियां रोने लगती है, जाकर कहते शांत रहो, महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, हाँ, गोलोक केरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन उनके घर में प्रकट हो रहा है, गोलोक का जो रास मंडल का, रास लीला का आनंद है वो चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन से उनके घर में प्रकट कर रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, अपने पारिवारिक जो वात्सल्य है उनका, जो ममता है, उसके अनेक हजारों गुना उनको प्रेम महाप्रभु जी के सेवा सेवा में, तो उनको बता रहे, ऐसा नहीं कि उनको परिवार में बिल्कुल उनको तुच्छ लगता है, उनको घृणा करते हैं, और वाइफ को देख के उनको रोना आता है और पुत्र को देख के उनको घृणा आती है, ऐसा नहीं था उनका, सब पर वो प्रेम करते, क्योंकि सब लोग भगवान के भक्त थे, लेकिन फिर भी उनकी प्राइमरी यानी कि प्राथमिक आसक्ति थी भगवान के सेवा में। तो आगे बताते, रोना नहीं कोई, हाँ, थोड़ा धीरे से रोना, अगर तुम रोओगे जोर से और भगवान के कीर्तन में अगर बाधा आ गई तो सबको मैं घर के बाहर कर दूंगा। कुछ देर बाद महाप्रभु जी कीर्तन में जब नृत्य करते हैं तो उनको अजीब सा लगता है, तो पूछते क्या हो रहा है आज, ऐसा दिव्य आनंद का अनुभूति नहीं हो रहा है, बताओ क्या हुआ है, बोला कुछ नहीं है महाप्रभु जी, आप करो करो कीर्तन करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं बताओ मुझे, ले जाओ अंदर, क्या देखना चाहता हूँ मैं। अंदर जाके देखते हैं तो उनके पुत्र का देहांत हुआ है, महाप्रभु जी इतने गदगद हो जाते हैं, अरे ऐसे ऐसे भक्तों का संग मैं कैसे छोड़ पाऊंगा, मतलब उनके मन में जो संन्यास ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो रही थी, इसका पहला आविर्भाव जो उन्होंने उस समय किया, किससे बात नहीं किया, ऐसे अपने आप में स्वगत में बात किया, मनोगत में, कि ऐसे प्रेम करने वाले श्रीवास जैसे भक्तों का मैं कैसे चाक कर सकूंगा। तो ये श्रीवास आचार्य जो है ये गृहस्थ है लेकिन सबसे बड़े सन्यासी। प्रभुपाद जी कहते थे हमेशा कि अगर कोई गृहस्थ जीवन में गृहस्थ जीवन के मूल्यों का अगर तंतोतंत यानी कि परिपूर्णता से पालन करता है तो वो सन्यासी से बढ़कर है। क्या तत्व है वो? गृहस्थ जीवन में केंद्र मानना कृष्ण को, हाँ, गृहमेदी वो व्यक्ति है जो शरीर के आनंद के लिए अपने विवाह करता है, शरीर को तुष्ट करने के लिए। स्त्री भी पुरुष के पास विवाह के लिए आती है शरीर को तुष्ट करने के लिए, पुरुष भी स्त्री को स्वीकार करता है शरीर को तुष्ट करने के लिए। उससे जो संतति उत्पन्न होती है वो भी इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, धन कमाते वो भी धन इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। सारा जीवन का केंद्र स्थान क्या है? मेरी तृप्ति, मेरा आनंद। लेकिन गृहस्थ जो है, गृहस्थ आश्रमी जो है, आश्रम का मतलब क्या है? आश्रम वो जगह है जहां पर भगवान केंद्र स्थान में है, भगवान स्वामी और मालिक है। तो जो ऐसे ही अपने घर में भगवान को मालिक रखता है, भगवान को जगह भी वैसा रखता है कि ड्रॉवर में रखा हुआ है कहीं, हम पूजा के ड्रॉवर खोलता है अगरबत्ती लगाते ड्रॉवर बंद कर देता है, और अपने को मेन स्थान में रखा है, अपना घर जो बिस्तर जो है और अपने दीवारें सजा के रखी है, किचन को सजा के रखा है और भगवान को ड्रॉवर में रखा है, या तो कोई कोने में रखा है या कोई किचन के एक कोने में ऐसा रखा है उनको, वो गृहस्थ आश्रम में नहीं है। जिसके घर में प्रवेश करते ही भगवान का दर्शन हो एकदम प्रोमिनेंट स्थान पे, या कि आपको व्यवहार से पता चले कि यस इसके जीवन में ये व्यक्ति जो है प्रधान है, और वो घर में आकर रोज जब जाता है काम पर अपने तो प्रणाम करके जाता है, ठाकुर जी आपके सेवा के लिए मैं जा रहा हूं, जब लौट के आता है तो भी दंडवत प्रणाम करता है, ठाकुर जी आपकी सेवा करके आपके चरणों में आया हूं। बाहर भी जाकर उनको ही ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सेवा में ही गृहस्थी को चलाने के लिए मेहनत करता है, और धन को लाकर पूरे उनकी सेवा में लगाता है, और उनकी गृहस्थी जो भगवान की गृहस्थी मानते हो, अपनी गृहस्थी नहीं मानते, भगवान की गृहस्थी को, अपनी गृहस्थी को भगवान की प्रॉपर्टी मानते हैं, अपनी पत्नी को, अपने बालकों को। ठाकुर भक्ति उन्होंने जी कहते हैं कि जब मैं काम से घर पे आता हूँ, देखता हूँ कि मेरे घर में भगवान की पूजा हो रही है, तो मुझे लगता है कि साक्षात मैं गोलोक में प्रवेश कर रहा हूँ। गृह थे गोलोक भाए, मेरा घर जो है, मेरा गृहस्थी जो है, मुझे लगता है कि मैं गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी, मेरे बालक, मेरा घर का सब व्यंजन, सब व्यवस्था, सब मेरी सुविधा जो है वो सब इनकी सेवा में है, वही स्वामी है। अमी तो तुमार, तुम्ही तो अमार, कितनी बड़ी संकल्पना है। तो विरक्ति की तो ये मूल यही है, अपने आप को बाजू में हट लगकर केंद्र स्थान में भगवान को रखना। अभी हम हमारे जीवन में केंद्र स्थान में हम हैं, आई एम द सेंटर ऑफ माई लाइफ, कितना भी भजन करेंगे तो भी मुझे क्या मिलेगा, मेरी कब शुद्धि होगी, मेरा कब उद्धार होगा, यही केंद्र स्थान में विचार है हमारा। लेकिन जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं बाइबल में, दाय विल बी डन, आपकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए और आपकी इच्छा के अनुसार मेरी इच्छा एक रूप होनी चाहिए। उस वो जीवन जो है वो संन्यास्त जीवन है, चाहे हम बहुत कीमती वस्त्र पहने हुए हैं या बहुत कीमती घर में रह रहे हैं या कीमती वाहनों में घूम रहे हैं, कीमती कीमती भोजन ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। युधिष्ठिर महाराज तो विश्व के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, वो उनका क्या थाट था, उनका थाट देखकर बहुत ऐश्वर्य संपन्न था दुर्योधन, उसको भी द्वेष आया। अम्बरीश महाराज कितने संपन्न थे, कितने राजाओं का वर्णन है, ऋषभदेव महाराज कितने राजा ऋषि, उनको राज ऋषि कहा जाता है क्योंकि राजा होते हुए इतना धन संपत्ति होते हुए भी वो ऋषि की तरह रहते थे। ऋषि का मतलब क्या है, जो सब भगवान के लिए समर्पित है उनका, और क्या प्रूफ है कि वो भगवान के लिए समर्पित थे। युधिष्ठिर महाराज जब भगवान चले गए तो इतना बड़ा विश्व का चक्रवर्ती साम्राज्य छोड़कर एक क्षण में निकल गए, वो भी कोपिन पहनकर निकल गए उत्तर दिशा में, यही उनका प्रूफ था। अगर वो अटैच्ड होते उस, आपको लगता होगा अरे क्या इतना बड़ा युद्ध करवाया, कितना दिन, कितना पॉलिटिक्स करवाया, सबका नरसंहार करवाया, करोड़ों लोगों का राज्य के लिए किया होगा, है ना, अर्जुन को, पांडवों को राज्य दिलाने के लिए, ऐश्वर्य संपन्न कराने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए, सम्राट बनाने के लिए दिया होगा, उन्होंने भी उसी के लिए उसको युद्ध किया होगा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज की भावना क्या थी, युधिष्ठिर महाराज की वो बड़े क्या कहते हैं उसको, वेरी गिल्टी, बहुत निराश थे वो कि मेरी वजह से मुझे राजा बनाने के लिए इतना नरसंहार किया गया। बार बार भगवान का बोलते रहे कृपा करके मुझे कुछ उपाय बताइए, इसका उत्साह बताइए, कुछ करूं मैं, यज्ञ करूं, कुछ पश्चाताप करूं। और वही युधिष्ठिर महाराज राज्य किया उन्होंने कई हजारों साल तक, तो क्या वो हजारों साल नहीं, कुछ साल राज्य किया, तो कैसे राज्य किया, भगवान के सेवक बनकर, कृष्ण का दास बनकर, कृष्ण के लिए ही राज्य किया उन्होंने। और जब कृष्ण चले गए, अंतर्धान हो गए, अपनी लीलाओं को समाप्त करते हुए, तो क्या हुआ, झट से सब लोग पांडव और द्रौपदी राज्य को छोड़कर चले गए। अपने नन्हे बालक जो उनका पोता था परीक्षित महाराज, उसको राज्याभिषेक करके मंत्रियों के हाथ में राज्य देकर तुरंत भगवान की प्राप्ति के लिए चले गए। उनका सर्व जीवन जो था वो भगवान के लिए ही था, उनका हर सांस, हर कृति, हर सेवा उनकी भगवान के लिए थी। अर्जुन तो इतना भगवानमय था, किसके रोम रोम से कृष्ण 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 का नाम उच्चारण हुआ करता। युधिष्ठिर महाराज को भी कृष्ण भगवान ने यह सिद्ध करके दिखाया कि जाओ उसके सोते हुए शरीर के कान लगाओ और रोम रोम से उनको कृष्ण की आवाज आएगी, इतने वो समर्पित थे। तो बाहरी उनका ऐश्वर्य जो था उसका कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि वो केवल भगवान के लिए था। रामानंद राय भी ऐसे थे, इतना सुंदर कुर्ता और इतने बड़े आसन पे बैठे थे और मुंह से तांबूल चबा रहे थे, आईने में देख रहे थे, सुगंधित तेल लगाकर उनका स्वागत हुआ, छत्र के नीचे चल रहे थे, उनको पंखा कर रहे थे बहुत सारे लोग। तो गदाधर पंडित ने सोचा, अरे ये मुझे इनके पास क्यों ले गया है, उनके भक्त मित्र थे, उनको लेके आए थे वो। लेकिन गदाधर पंडित को ये मन में संदेह हुआ था कि मैं तो, क्योंकि जन्म से ब्रह्मचारी थे वो, उनके मन में कोई वासना कभी, उन्होंने ऐसा चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि गदाधर पंडित के मन में कभी भी कोई भी इंद्रिय भोग की इच्छा प्रकट हुई नहीं, ऐसे व्यक्ति थे वो। और गुरु बनाने के लिए उनको किसके पास लिया जाया गया, रामानंद राय की तरफ, नहीं सॉरी आई एम सॉरी वेरी वेरी सॉरी पुंडरीक विद्यानिधि के पास लेके गए। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण के गौरव में दो श्लोक कहे, उनके वन में जा रहे हैं और उनके सर में मोर पंख है और वो वनमाला पहने हुए हैं, सभी गांव गऊं का चारण कर रहे हैं, सभी वातावरण को प्रफुल्लित कर रहे हैं, ऐसा वर्णन उन्होंने किया श्लोक में, वैसे ही सुनते ही वो इतने भाव विभोर हो गए कि सब कपड़े वड़े फाड़ दिए, 8 लोगों को उनको पकड़ना मुश्किल हो गया, जमीन पर बेहोश हो गए सब, उन्होंने जहाँ पर जितनी भी फूलदानियाँ थी सब ध्वस्त कर दिया और बेहोश हो गए, 8 घंटे तक बेहोश रहे। तब जाकर गदाधर पंडित के ध्यान में आया कि ये कौन है। तब उन्हें माफ़ी मांगी कि मैंने मानसिक अपराध किया इनका, अब मैं क्या कर सकता हूँ इनके मानसिक अपराध को नष्ट करने के लिए, मैं इनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, उनका आश्रय ग्रहण करूँगा, उनका शिष्य बनूंगा, उनकी सेवा करूँगा। तो ये क्या है कि बाहरी रूप सब कुछ है लेकिन अंदर में कृष्णमय है वो, ऐसे पुंडरीक विद्यानिधि का वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। उसके बाद में उदाहरण आता है श्रीधर कोल्लवेचा का। श्रीधर कोल्लवेचा भी ऐसे ही थे, इतने गरीब थे वो कि उनके पास में जो वस्त्र था उसमें छेद अधिक थे, होल्स अधिक थे और वस्त्र कम था। उनके घर के जो छत था उसके अंदर छत कम था और होल ज़्यादा थे, बारिश में उनके घर से वर्षा निकलती थी बाहर, इतनी वर्षा हुआ करती थी। और वो केले के पत्ते को द्रोण बनाते थे और बेचते थे, केले को बेचते थे, केले के द्रोण के पत्ते को बेचते, पत्ते को बचते बेचते थे, और उसमें जो भी कुछ छोटा बहुत इनकम होता था उसमें से आधा इनकम गंगा जी के सेवा में प्रार्थना पूजा करने में लगाते थे। क्योंकि गंगा जी जो है वो कृष्ण प्रेम प्रदायिनी है, क्योंकि वो मायापुर में थे, मायापुर की गंगा का ऐसा महात्म्य बताया गया है कि आम जनता में, आम विश्व में ये जो गंगा जी है जो कि पापों से मुक्त कराती है, लेकिन जब मायापुर नवद्वीप धाम में ये बहती है तो पापों से मुक्त कराने के साथ साथ कृष्ण प्रेम को साक्षात देती है। जो भी केवल गंगा जी मायापुर के अंदर, मायापुर के गंगा को केवल प्रेम से भी निहारेंगे, हृदय से प्रेम से निहारेंगे, उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उसका महात्म्य बताया गया है। उस गंगा जी की सेवा में वो अपने छोटी सी आमदनी की आधी आमदनी 50% लगाते थे और रात रात तक कृष्ण को पुकारते हुए जप करते थे। लोग सोचते थे कि ये भूखा है आदमी, इसके आधा खर्च करने के बाद कुछ बचता नहीं उसके पास में, तो रोटी नहीं मिलती होगी, तो भूख से ये चिल्लाता होगा, तो रोटियां फेंकते थे उसके ऊपर, लो ये रोटी खा लो, हमको सोने दो, लेकिन मत चिल्लाओ रात को। लेकिन ये कृष्ण भावना में इतने मशहूर मग्न हुआ करते थे, तो उनके पास में चैतन्य महाप्रभु आकर उनके रोज केले और उनके पत्ते छीनते थे, उनसे आर्गुमेंट करते थे कि बहुत महंगा देते हो, पूरे नवद्वीप में सबसे ज़्यादा कॉस्ट तुम्हारा है। तो नहीं मैं तो सबसे सस्ता बेचता हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं तुमसे क्या छीन लूँगा, यही सबसे बड़ा सबसे सस्ता यही भाव है। और आखिर में वो उसको उठाकर भागते थे कि मैं इसको फ्री में लेके जाऊँगा। आप समझ सकते हैं श्रीधर कोल्लवेचा जो था, भक्त था, उसकी पहचान उस समय नवद्वीप में किसी को नहीं थी, कोई श्रीवास पंडित कोई अद्वैत आचार्य उनको जानते नहीं थे उस समय, लेकिन हर रोज नियम से 2 घंटे चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित उनके साथ बिताते थे, किसको पता नहीं था, हर रोज एवरी डे 2 आवर्स यही नोकझोंक, कितना भाव है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, 2-2 घंटे उसके नोकझोंक करने के बाद में वो फ्री में लेकर भागते थे। जब चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित जी का महाप्रकाश का समय आया, जब उन्होंने 21 घंटे शत प्रहर लीला की, शत प्रहर मतलब 7 घंटे 21 घंटा 7 प्रहर 21 घंटा का जब लीला किया, सब भक्तों को कृपा किया, तो उन्होंने क्या किया, कहा कि जाओ श्रीधर को लेके आओ। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे कि श्रीधर कौन है, बोले जाओ नवद्वीप के कोने कोने में जाओ और श्रीधर को पुकारो और लेके आओ हमारे पास उनको। तो सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए, अरे कोई बड़ा भक्त होगा कि महाप्रभु श्रीधर नाम के भक्त को पुकार रहे जो हमको पता भी नहीं है, तो गए सब लोग ढूंढे ढूंढे, तो श्रीधर अपने झोपड़ी में भगवान के नाम को पुकार रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गए उनके पास, बोला तुम्हारा नाम श्रीधर है? हाँ मेरा नाम श्रीधर है। बोले महाप्रभु निमाय पंडित तुमको पुकार रहे हैं शतप्रहर लीला में सहभागी होने के लिए। मुझे पुकार रहे हैं? मुझे? सच में आप कह रहे हो? और ऐसे कहते कहते बेहोश हो गए, fallen unconscious। कैसे मैं जैसे तुच्छ व्यक्ति को निमाय पंडित महाप्रकाश लीला में याद कर सकते हैं? मैं इतना योग्य नहीं हूं, मैं इतना गरीब फटीचर व्यक्ति हूं। लेकिन उसके भाव को देखते हुए उसको बेहोशी में उठा के लेके गए श्रीवास आंगन में। हाँ, और श्रीवास आंगन में बेहोशी में उनको लाया गया, निमाय पंडित जी देखो यहां पर श्रीधर को ले जाओ। तो महाप्रभु जी ने उनको हाथ लगाया और जागृत किया, बोले हे श्रीधर याद है तुम्हारे पास में केले के पत्ते और द्रोण छीनने के आया करता था, मांगो क्या चाहते हो? तो श्रीधर जी ऐसे खड़े हैं, क्या मांगे भगवान से? तो कह रहे मैं आपको वैकुंठ का राज्य दूंगा। सोच सकते हैं आप कि अभी यहां पर अगर महाप्रभु चैतन्य प्रकट होते हैं अपने महाप्रकाश लीला के भाव में और आपको कहते हैं क्या चाहिए आपको, वैकुंठ दे दूं आपको, सारी सिद्धियां आपको दे दूं एक साथ में, आपको सब लोक निर्माण करने की शक्ति दे दूं, अनंत धन आपको दे दूं, मेरे धाम में वास दे दूं, तो आपको लगेगा कि कौन सी लिस्ट बनाऊं मैं, अभी क्या बनाऊं उनके लिए, अभी एक साथ में मांग लूं, अभी बहुत अच्छा मौका आया है। लेकिन श्रीधर ने क्या जवाब दिया, सबको सुनने लायक है, हम सब गृहस्थ जितने यहां बैठे सबको सुनना और मनन करना आवश्यक है उस पर। वो कहते हैं कि हे गौरांगा ये सब लेकर मैं क्या करूंगा, ये सब मेरे भक्ति में बाधा है, इट विल क्रिएट ओनली डिस्टर्बेंस इन माई भक्ति। ये आप राज्य बोल रहे हो, सिद्धियां बोल रहे हो, वैकुंठ का वास बोल रहे हो, ये सब धन दौलत की मुझे लोभन दे रहे हो, ये सब मेरे भक्ति में एक बाधा है भगवान। लेकिन श्रीधर मैं चाहता हूं तुम्हें कुछ दे दूं, मांगो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, मैं देना चाहता हूं तुम्हें। आप सोचते कैसे भक्त है वो, जिनको भगवान देना चाहते हैं वो मांग नहीं रहे उनसे कुछ, हमारे लिए बड़ा उदाहरण है। हम भगवान के सामने खड़े होकर क्या क्या मांगते रहते हम सबको पता है हमारे मन में कितनी लंबी लिस्ट होती है। हाँ, तथाकथित भगवान की भक्ति भी होती है वो, कि भगवान हमको ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ज्ञान मिले, मुक्ति मिले और आपके धाम में निवास मिले, बहुत सारा हम मांगते रहते हैं। लेकिन ये निरपेक्ष भक्त ऐसे हैं कि भगवान उनको देना चाहते हैं, वो मांगना नहीं चाहते हैं, वास्तव में उनके मन में कोई इच्छा भी नहीं है। फिर आखिर में भगवान कहते हैं कि मांगो, आपको मांगना ही पड़ेगा, मुझे देना ही है। तो वो कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक आप मेरे घर में, मेरे दुकान में आकर मेरे केले के पत्ते छीनते रहा करो, यही मेरी इच्छा है। यहां पर संन्यास का वर्णन हो रहा है, यही संन्यास्त प्रवृत्ति है, केवल भगवान का आनंद। क्योंकि वो जानते थे कि वो दो दो घंटा रोज महाप्रभु जी वहां पर आते थे, गौरांग महाप्रभु आनंद लेने के लिए आते थे, अपने भगवान अपने भक्त का जिसको वो अनंत प्रेम करते थे उससे मिश्किल यानी कि नटखट आनंद को प्राप्त करने के लिए रोज वहां पर आके नोक झोंक करते थे। वो जैसे गोपियों का दूध छीन रहे हैं, जैसे मक्खन चुरा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं उनको करने की, लेकिन ऐसा नटखट आनंद देने के लिए वो गोपियों के घर में जाकर मक्खन छीना करते थे, वैसे ही अपने भक्त के साथ में वो ऐसे प्रेम का आदान प्रदान किया करते थे। ऐसे महाप्रभु जी के संग में भक्त थे, इसलिए महाप्रभु जी ने विचार किया कि ऐसे भक्तों को छोड़कर मैं संन्यास कैसे लूंगा। फिर भी उन्होंने जगत के कल्याण के लिए सबको त्याग करके, नवद्वीप को त्याग करके उन्होंने संन्यास लिया। और उनके संन्यास का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, वो है रघुनाथ दास गोस्वामी। स्वयं महाप्रभु जी कहते हैं, स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि संन्यास, विरक्ति, वैराग्य, ये जो विषय है, इस विषय के अंदर रघुनाथ दास का तुलना कोई नहीं कर सकता है, ना करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई करेगा तो मुंह पे गिरेगा, अपना सर्वनाश कर लेगा अगर तुलना भी करेगा। सनातन गोस्वामी की नम्रता के कोई तुलना करने का प्रयास करने का करेगा, नकल करेगा उनकी तरह नम्र बनने का, तो वो भी अपने मुंह पे गिरेगा भक्ति जीवन में और नष्ट हो जाएगा, ऐसा उनका विरक्ति था। तो चैतन्य महाप्रभु जब ही बार बार रघुनाथ दास जी अपने घर से भागना चाहते थे, राजकुमार थे वो, उनके पिताजी के राज्य में वो आने वाले राजा होने वाले थे, तो क्या हुआ कि वो बार बार भागने की कोशिश करते थे, उनके पीछे सैनिक लगाए गए, जहां पर भी गए सैनिक गार्ड में रहा करते थे राजपुत्र कि भाग न जाए, उनको राजपाठ सिखाने का, व्यवहार सिखाने का बहुत कोशिश करते वो, लेकिन वो उस पर कोई रुचि लेते नहीं है। माँ बाप सोचते हैं कि अच्छे कोई सुंदर पत्नी को लेकर विवाह करेंगे ना तो बराबर व्यक्ति लाइन में आ जाएगा, सब व्यक्ति की जो हवा है निकल जाएगी उसकी। इसलिए बहुत सुंदर सर्वगुण संपन्न अच्छे कन्या के साथ उनका विवाह करते हैं। इतनी सद्गुण संपन्न कन्या, इतनी सेवाभावी, इतना आदरपूर्वक नम्र स्त्री को विवाह करने के पश्चात भी उनको बिल्कुल संसार में रुचि उत्पन्न नहीं होती है। तब जाकर उनको चैतन्य महाप्रभु एक संदेश भेजते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है वो, सब लोग ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपके लिए मेरे जीवन को अर्पण करना है, मैं आपके साथ आना चाहता हूं, मुझे संसार में कोई रुचि नहीं है। तो वो संदेश क्या है कि आपका अभी तक समय नहीं आया, आप वेट करो। और आपके लिए मैसेज देते हैं वो, खाली इतना ही मैसेज देते हैं कि कोई विवाहित पुरुष स्त्री है, उनका गृहस्थ चल रहा है और पत्नी का दिल किसी और पुरुष के साथ में लगा हुआ है, उसका प्रेम, तो वो क्या करती है, वो अपने घर की जो सेवाएं हैं बहुत बढ़िया तरीके से करती है, कोई भी पति की सेवा में कमी नहीं करती है, उसके खाना पीना रहना, उसकी हर कपड़े की सेवा, उसकी व्यवहार की सेवा एकदम दिल लगाकर करती है कि उसको मन में कोई डाउट भी ना आ जाए। और उसको संतुष्ट करने के पश्चात में एकांत में जाकर उस व्यक्ति से मिलती है जिससे वो प्रेम करती है, और जब तक अपने पति की सेवा करती रहती है उसका मन हमेशा इसी विचार में मन पड़ा रहता है कि कैसे मैं उस व्यक्ति को मिलूं। बस इतना संदेश भेज देते हैं उसको। तो रघुनाथ दास जी समझ जाते हैं कि उनके लिए संदेश क्या है, मतलब अपने गृहस्थी में, राजपाट में, व्यवहार में ऐसे कुशल बने रहो, ऐसा सुंदर व्यवहार और सुंदर कुशलता से करो, लेकिन जैसे वो व्यक्ति औरत जो है ये सब करते हुए उस अपने व्यक्ति की ध्यान कर रही है, इसको मिलना है उसको, वैसे ही कृष्ण में मन लगाया करो। कितना सुंदर उन्होंने दृष्टांत दिया है कि हम सबको गृहस्थ आश्रम में रह के हम सबसे श्रेष्ठ सन्यासी के रूप में रह सकते हैं, क्योंकि सन्यास एक तरह से एक आश्रम है। और जब ही रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि बताओ जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि वर्ण आश्रम के अंदर ठीक से रहना, उस कर्तव्य को पालन करना, यही जीवन का उद्देश्य है। तो महाप्रभु जी क्या कहते हैं, अहो भाइय आगे कहो आर, ये सब फिर भी बाह्य है, एक्सटर्नल है, दिस इज एक्सटर्नल। तो संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, हाँ, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये फिर भी शरीर के आधार पर बने हुए आश्रम है, शरीर धर्म इसमें सम्मिलित है। तो उस तरह संन्यास भी एक शरीर का वस्त्र है जिसको हमने धारण किया है, लेकिन संन्यास्त प्रवृत्ति उस वस्त्र पर आधार नहीं लेती है, संन्यास्त प्रवृत्ति हृदय के अंदर होनी चाहिए। तो रघुनाथ दास समझ गए, उसके बाद में तुरंत उन्होंने सब रुचि लेना आरंभ किया अपने अपने, मतलब लोगों को उन्होंने कहा कि पता नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, संसार का कार्य इतने बढ़िया से करो, अपने कर्तव्य को इतने बढ़िया से निभाओ कि लोगों को लगना नहीं चाहिए कि तुम्हारा दिल जो है वो किसको दिया है। तो वो इतना अच्छी तरह से राजपुत्र बन जाते हैं, अपने राजपाट का व्यवहार करते हैं और अपने धन का अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, पत्नी को अच्छी तरह संभालते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं। जो पहले सैनिकों को रोज आदेश दिया करते थे गार्ड रखो इनके ऊपर, वो धीरे धीरे ढीले ढीले हो जाते हैं, मतलब इतना अभी गृहस्थी में दिल लगा के बैठा हुआ है, इतना पत्नी पर उसका प्रेम है, इतना राजपाट पे व्यवहार, इतना तक कि एक बार उसके पिताजी और चाचा को अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि राजा को, वो राजा जो थे नवाब हुसैन शाह, उनके अंडर वो सब, मतलब क्या कहते हैं उसको, उनको उस राज्य का भार दिया गया था, लेकिन प्रमुख राजा थे नवाब हुसैन शाह जो कंस के अवतार थे, उनको वो टैक्स पहुंचाने में कुछ गड़बड़ करते हैं, तो उनका जो दुश्मन होता है वो राजा को खबर करता है कि ये जो है ना, ये जो हिरण्य मुजुमदार, गोवर्धन मुजुमदार, इनके राज्य से आपको टैक्स बराबर नहीं आ रहा है। तो राज्य उन जो राजा जो है उनके ऊपर ऑडिटर भेजता है, ऑडिटर देखभाल करने के लिए क्या उनका गड़बड़ है, और गड़बड़ निकलता है उनके, तो उन्होंने कुछ टैक्स कम दिया है, तो उनके पिताजी को, रघुनाथ दास जी के पिताजी को और चाचाजी को अरेस्ट किया जाता है, इतने बड़े अधिकारियों को। उस जमाने में 1,200,000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं वो राजा के दरबार में टैक्स के रूप में पे किया करते थे, सोचो उनका इनकम कितना होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को भी अरेस्ट कर लेते हैं, तब जाकर जो आता है ना ऑडिटर चेक करने के लिए, उसके साथ जाके रघुनाथ दास जी बात करते हैं, और इतने मधुर और इतना कौशल्यपूर्ण बात करते हैं, इतना तर्कपूर्ण बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि ऐसा एक्चुअली नहीं है, इन्होंने टैक्स पूरा पेमेंट किया है और जो भी कमी है मैं पूरी कर दूंगा, आप हमारे चाचा के समान हैं। उनके मधुर, क्या कहते हैं उसको, मुत्सुद्देगिर कहते हैं उसको, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, बहुत प्रभावित होते हैं, इतना छोटा सा बालक है लेकिन कितना कुशल बात करता है, और तुरंत धरण्य मजुमदार को और गोवर्धन मजुमदार को रिहा कर देते हैं। तो ये देखकर उनके माता पिता को लगता है कि अभी तो पूरा संसारी कार्य में मेरा बेटा जो है लग गया है, तो पहरेदार को ढीला कर देते हैं। और एक दिन एक मौका देखकर ये देवी की पूजा करने के बहाने निकल जाते हैं। देवी के पुजारी जो था वो बीमार पड़ जाता है, 7 दिन किसी अलग पुजारी की व्यवस्था नहीं है, तो कहते हैं हम करेंगे देवी की पूजा। तो सैनिक जाते हैं उनको लेकर और पीछे खड़े हो जाते हैं, देवी की पूजा करने कहाँ जाएगा, ये पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। और ऐसे भाग जाते हैं, ऐसे भागते रात में जंगल में, हाँ हिंस्र शापदों को जानवरों के बीच में से अंधेरे में रास्ता पत्थर कांटे को थकराते हुए, चमड़ी फटते हुए, उनके कपड़े फट जाते हैं, चमड़ी फट जाती है, भागते 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 जगन्नाथपुर तक पहुंच जाती है। तो हमारे लिए क्या इसमें संदेश है, रघुनाथ दास जी का जीवन जो था उन्होंने भगवान के आदेश के अनुसार सारे सांसारिक क्रिया में पूर्ण रुचि लेकर कार्य किया, लेकिन उनका हृदय हमेशा भगवान के लिए ही बिकार रहा। इट वॉज ऑलवेज सोल्ड आउट फॉर कृष्णा। और भगवान के आदेश के और या योजना के अनुसार ही वो एक दिन वहां से भाग निकले। आगे लंबी कहानी है उनकी, कैसे रहे वो। पहले उन्होंने आकर महाप्रसाद लिया चैतन्य महाप्रभु का, कुछ दिन महाप्रसाद प्राप्त किया, फिर चले गए वहां से। महाप्रभु ने पूछा क्या हुआ, कहाँ है रघुनाथ दास जी। बोले उन्होंने महाप्रसाद लेना बंद कर दिया। फिर क्या करते हैं वो, बोले वो भिक्षा के होता ना वो वहां पर अन्न छत्र होता है, वहां पर लाइन में खड़े रहते हैं। तो कुछ दिन बोला अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, महाप्रभु जी ने बहुत अपनी खुशी व्यक्त की। और कुछ दिन बाद पूछा रघुनाथ जी कहाँ पर है, बोले अभी वो अन्न छत्र में भिक्षा नहीं मांगते, अभी वो खड़े रहते हैं और जहाँ पर गाय भी अपना चूसा हुआ खाना जो उसको अप्रिय होता है वो फेंक देती है, उस अन्न को प्राप्त करती है। महाप्रभु जी बहुत खुश हो गए, उनको क्या लगता था कि मैं यहाँ पर लाइन में खड़ा हूँ, कोई मुझे देगा ये सोच रहा हूँ, ये वेश्या की तरह है, इसलिए मैं अभी वहाँ पर खड़ा रहना बंद कर दूंगा, कहीं से कुछ मिलेगा इस अपेक्षा में खड़ा नहीं रहूँगा वहाँ पर, मैं कोई देगा कोई नहीं देगा। हाँ इसलिए वो जहाँ पर महाप्रसाद सबको बांट कर खत्म हो चुका है और गायों को दिया गया है और गाय भी उसको खा चुकी है और गाय भी जिसको त्याग देती है वो वन वो खा रहे हैं, तो महाप्रभु जी तुरंत अपना निवास स्थान से भाग के जाते हैं और पकड़ते हैं रघुनाथ दास जी को, बोलो तुम्हारे हाथ में क्या मुझे दे दो, और छीन के उनके हाथ से जो अन्न है बचा वो खाते हैं और कहते हैं कि तुम विश्व का सबसे कीमती धन को लूट रहे हो और मुझसे उसको छुपा रहे हो, आज मैं पता चला कि तुम्हारे पास में क्या धन है। और आप रघुनाथ दास की अवस्था को समझ सकते हैं ना, उस समय महाप्रभु जी आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, तो छूटा हुआ सड़ा हुआ अन्न है, लेकिन नहीं आप मुझसे सबसे बड़ा जो आनंद है विश्व का वो तुम अकेले ग्रहण कर रहे हो और मुझसे उसे वंचित रख रहे हो। तो महाप्रभु जी ने गले लगाया उसे और इतना संकोच हुआ रघुनाथ को इस समय। महाप्रभु जी ने क्या किया, रघुनाथ दास जी का गौरव को वर्णन किया, गौरव को प्रकट किया हमारे लिए कि कैसा वैराग्य है उनके बीच में। और फिर यथावकाश महाप्रभु जी की आज्ञा से रघुनाथ दास जी राधा कुंड में चले गए। राधा कुंड में भगवान ने जो उनको दृष्टांत दिया कि राधा कुंड का उद्धार करो आप, तो राधा कुंड का पूरा जो उद्धार है रघुनाथ दास जी ने किया है। और वो इतने विरक्त थे महाप्रभु जी के जाने के पश्चात, अंतर्धान होने के पश्चात, तो उन्होंने कहा कि मैं गिरिराज गोवर्धन पर चढ़कर छलांग लगाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तब जाकर सनातन गोस्वामी उनको समझाते हैं कि ये तुम्हारा शरीर जो है, तुमने संन्यास लिया हुआ है, तुम्हारा शरीर तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारा शरीर जो है मेरी प्रॉपर्टी है, तो मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी इच्छा से तुम नष्ट कैसे कर सकते हो, व्हाट राइट यू हैव गॉट। अगर तुमने मेरे शरीर, तुम्हारे शरीर को मुझे अर्पण किया है संन्यास के रूप में, काया वाचा मने और जीव, हाँ तो तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है वो, मेरी सेवा में लगाना तुम्हारा फर्ज है। तो फिर रुक जाते हैं वो, तो फिर सेवा करने लगते हैं। लेकिन 3 दिन में एक बार अपने हाथ पर जितना छाछ जमा हो सकता है उतना ग्रहण करते थे, और वो ग्रहण करते करते भी अपने आप को कोसते थे, गाली देते थे, इंद्रिय भोगी कहते थे 3 दिन में एक हाथ में जितना छाछ आता है उसको पीने के बाद में अगर कोई अपने आप को भोगी कह सकता है तो उसका संन्यास का जो लेवल है वो समझ सकते हैं हम। हमको दिन में 3 बार खाने के बाद भी भूख लगती है मिठाई और पंच पकवान खाने के पश्चात भी शाम को भूख लगती है हमको, हाँ, और एकादशी के बाद में तो क्या कहें, हम वेट करते हैं 6:18 कब हो जाएंगे, अगर हम कल का जितना नया नहीं गया था उतना कैसे हम लोग मेकअप करेंगे उसको। तो इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं कि इनके संन्यास और विरक्ति का तुलना और दखल कोई नहीं कर सकता है। और स्वयं जानवा देवी जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी है वो इनके संग के लिए भाग भाग के रघुनाथ राधा कुंड पे आती है, उनका संग करती है, उनको देखकर उनके आंखों में अश्रु बहते हैं। तो हम क्या समझ सकते हैं इनके उदाहरण से कि इनका जो विरक्ति था वो अपने आप में ऐसा था कि भगवान के लिए समर्पित था। श्रीवास पंडित, श्रीधर कोलवेज, बाकी सब जो गृहस्थ थे उनका गृहस्थ जीवन भी भगवान की सेवा में समर्पित था। और रघुनाथ दास, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऐसे जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनका जीवन भी भगवान की सेवा में समर्पित था। तो संन्यास का रहस्य क्या है? संन्यास का रहस्य सफेद और गेहूं वस्त्र नहीं है। संन्यास का रहस्य दंडा नहीं है। संन्यास का रहस्य वो विरक्ति का बीज है जो इनके हृदय में होता है। इसलिए इन लोगों से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? हमारे जीवन में इनका उदाहरण सुनकर हम कभी भी तुलना तो नहीं कर सकते, इनका आदेश दिया गया है, तो क्या कर सकते हैं? इनके अंदर जो विरक्ति का बीज है उसको जरूर हम अपना सकते हैं। हमारे लिए ठाकुर भक्ति विनोद जी का उदाहरण तो है ना, वो ऐसे आचार्य हुए हैं, इतने कुशल थे वो अपने वर्क काम के अंदर, मैजिस्ट्रेट थे वो, लॉयर थे, और 16 घंटे जितने केसेस कोई नहीं कर सकता है पूर्ण, वो 4 घंटे में क्या करते, केवल देख के समझते थे के अंदर कौन गुनहगार है और क्या है, और कायदा उनको बिल्कुल बाय हार्ट था, और 4 घंटे के अंदर 16 घंटे का काम करते थे, और बाद में घर में जाकर केवल भजन लिखा करते थे। उनका टाइम टेबल देखेंगे आप, किताब है 7th गोस्वामी करके, आप जरूर पढ़िए, उसके अंदर एक अध्याय में उनका केवल टाइम टेबल का वर्णन दिया है, कैसे 24 घंटा वो बिताते थे, किस समय उठते थे, किस समय सोते थे, किस समय खतों का जवाब देते थे, किस समय शास्त्र पढ़ते थे, किस समय जप करते थे, किस समय कविता लिखते थे, किस समय ग्रंथ लिखते थे, किस समय प्रचार करने के लिए गांव में जाते थे, अधिकतर बीच रात में जाते थे वो गांव में प्रचार करने के लिए, और केवल 2-3 घंटा सोते थे, और काम भी करते थे, और इतने ऐसा नहीं कि भाई इतना भक्ति में उनका मन लगा हुआ है तो काम में तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं, बहुत मिस्टेक करते रहते हैं, ऐसा नहीं था उनका। उनका काम इतना कुशल था, उसका एक प्रमाण दिया गया है कि उन्होंने बहुत साल सेवा किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वो इतने कीमती अधिकारी थे, मैजिस्ट्रेट इतने कीमती थे कलेक्टर के रूप में, उन्होंने कहा कि अब मैं छोड़ दूंगा इस काम को, मुझे अभी महाप्रभु चैतन्य के मिशन में सेवा करनी है, तो मैं अभी रिटायर होऊंगा और छोड़ के चला जाऊंगा। ब्रिटिश अधिकारियों ने उस समय कहा कि आप कहाँ जाओगे? तो मैं नवद्वीप में जाऊंगा, गोद्रुम द्वीप में मेरा घर है, स्वानंद सुखदा कुंज, वहां पर निवास करूंगा और वहां से मेरे प्रचार कार्य को आरंभ करूंगा, ग्रंथ लिखूंगा, प्रचार करूंगा, लोगों गरीबों को भगवान के नाम का दान दूंगा। तो कहते कि आपको हम एक काम करते हैं आपके लिए, हमारे कलकत्ता से कोर्ट से आपके ऑफिस से आपके गोद्रुम द्वीप के घर तक रेल लाइन डालते हैं। ऐसा गृहस्थ कभी आज तक नहीं हुआ है, याद रखना, केवल रेलवे लाइन एक पैसेंजर के लिए, उसके घर में उसका स्टेशन, मतलब उसके दरवाजे पे गाड़ी रुकेगी, पूरी गाड़ी की बोगी में एक यात्री बैठेगा, बाकी अधिकारी बहुत होंगे उसको चलाने के लिए और साफ करने के लिए, यात्री एक बैठेगा और घर से उनको कलकत्ता ले जाएगा और वहां पर अपना काम करके फिर वो दोबारा उन घर पे छोड़ा जाएगा, मतलब उनका समय बचेगा। इसलिए ब्रिटिश लोग जो थे ना बहुत स्वार्थी थे, उनके हृदय में कभी भारतीय लोगों के प्रति आदर नहीं था, उनको तुच्छ मानते थे और उनको गुलाम के रूप में देखते थे, उन पर राज करना, उनको रगड़ना, उनको सेकेंडरी मतलब दुय्यम ट्रीटमेंट देना, हमारे लिए कैम्ब्रिज का स्कूल और भारतीय लोगों के लिए ऐसे घटिया स्कूल, ऐसे उनका सारा स्ट्रैटेजी था पूरा, इतना पूरे भारतीय समाज के प्रति उनका निचला दृष्टिकोण था। ऐसे होते हुए एक भारतीय व्यक्ति के प्रति उन्होंने क्या किया, कलकत्ता के कोर्ट से घर तक रेल लाइन डाला, क्योंकि उनके अंदर कुशलता थी, वो उसका उनका मटेरियल परफॉर्मेंस जो था इतना वैल्यू थी उसके अंदर। जब विशिकेशन नाम जैसा भयंकर जो सिद्ध पुरुष आया सामने और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज दिया, उसने कहा था कि मैं ब्रिटिश राज्य को नष्ट करूंगा मेरे सिद्धि के पावर के अनुसार, साथ साथ में औरतों को खराब करना, लूटना, लोगों को चुराना, और किसी यहाँ एक जगह पर लोगों को बीमारी ठीक करना और अच्छे अच्छे कार्य करना और वहाँ पर इंद्रिय भोग करना, सब काम करता था वो, समाज के लिए बहुत डेंजरस व्यक्ति था वो, लेकिन ब्रिटिशों को उसकी चिंता नहीं थी, उनको एक ही चिंता थी किसने कहा है कि मैं ब्रिटिश राज को नष्ट कर दूंगा। समाज के प्रति जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके कारण उनको उनकी परवाह नहीं थी, क्योंकि भारतीय लोगों के प्रति उनके मन में बहुत तुच्छ भावना थी। लेकिन इस काम के लिए कि ये प्रभावी व्यक्ति कहीं ना हमारे गवर्नमेंट को उलट ना दे, उन्होंने किसको भेजा, ठाकुर भक्ति विनोद को, क्योंकि उनको जानते थे, श्रद्धा थी उनके ऊपर कि ये व्यक्ति इतना प्रभावी, इतना कुशल और इतना मुत्सद्धिगिरी में इतना कुशल व्यक्ति है ये, कि यही इसका इलाज कर सकता है। और बड़ी कुशलता से ठाकुर भक्ति विनोद ने विशिकिशन का भी संहार किया, मतलब उसको शक्तिहीन कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई उसके अंदर, और समाज को उन्होंने गलत मार्ग से, भ्रष्ट मार्ग से उसको उनको बचाया और ब्रिटिशों का भी कार्य सिद्ध किया। ऐसे ठाकुर भक्ति विनोद थे। मैंने सब आपको क्यों बताया कि ये मत समझना कि गृहस्थ होकर अगर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे तो हमारे कार्य को दुर्लक्ष्य करना चाहिए, हमको हमको अपना कार्य नहीं आता है। हॉस्पिटल में अगर काम करें तो हमको सुई लगाना ठीक से नहीं आता है और बोतल लगाने के लिए चार बार प्रिक करना पड़ता है। ऐसा रहेंगे तो लोगों की श्रद्धा उड़ जाएगी, अरे ये भक्त है, बड़ी भक्ति अच्छी करते हैं, अच्छे अच्छे व्यवहार करते हैं, लेकिन अपना काम उनको नहीं आता है, अपनी पत्नी को अपने बच्चों को दुर्लक्ष्य कर देते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता है, पति भगवान की भक्ति में लीन है मंदिर में, निग्लिजेंस, हाँ ये गृहस्थ का लक्षण नहीं है, वो अपने काम में कर्तव्य में कभी झुकता नहीं है, लेकिन ये सब कर्तव्यों को करते हुए उनका हृदय जो है वो भगवान के चरणों में लीन रहता है। बाकी सारा समय जो है जो बचता है वो कम से कम समय में अपना कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं गृहस्थी को चलाने का, लेकिन बचा हुआ सारा समय जो है भगवान की सेवा में लीन कर देते हैं। क्या उनके वाक्य है अपने भजन में, वो लिखते हैं कि तव ऐसा कहते हैं कि आपके ही इच्छा के लिए मैं प्रयत्न करती रहूंगा, तव इच्छा जाहे करोबे जतन, मेरा जो प्रयत्न जो है जीवन का वो केवल आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं करूंगा। और क्या कहते हैं, आपकी सेवा में जो भी दुख होगा, सेवो तो परम सुख, तुम्हारा सेवाय होई वे दुख सेवो तो परम सुख। क्या कहते हैं कि जीवन में जब मैं आपकी सेवा करता हूं उसको करते हुए जो भी कष्ट आते हैं मुझे, तो भी बुरे अनुभव आते हैं, कभी कभी अपमान भी होता है, कभी कभी यातना होती है, बीमारी आ जाती है, वो सब मेरे लिए बड़े सुख का स्रोत है, बड़े श्रेष्ठ सुख का उगम है वो मेरे लिए। और आपकी सेवा में जब मैं सुखों को अनुभव, दुखों को अनुभव करता हूँ सुख के रूप में, तो अविद्या के कारण जो भी दुख होने वाले हैं वो सब मेरे जीवन में नष्ट हो जाते हैं। अविद्या मतलब क्या, कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, शरीर ही सर्वस्व है, सब कुछ मिथ्या है, हाँ जो भी करना है आनंद से जियो, घी खाओ और आनंद करो, ये जो प्रवृत्ति है इसको अविद्या कहते हैं। इस अविद्या के कारण जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख प्राप्त होता है। तो वो कहते हैं कि दुख तो प्राप्त होना ही है जीवन में, लेकिन जो व्यक्ति ये सारे दुख जो है भगवान की सेवा में प्राप्त करता है वो अविद्या के कारण होने वाले दुखों को नष्ट होते हुए नजर आता है, उनके जीवन में नष्ट हो जाते सभी कारण। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो व्यक्ति है ठाकुर भक्ति विनोद जी ये कैसे विचार करते हैं, उसको विचारधारणा को हमको स्वीकार करना चाहिए, यही संन्यास्त प्रवृत्ति है। वो ये नहीं सोचता है गृहस्थ कि जब मेरे जीवन में भगवान की सेवा करूंगा तो सुख ही सुख आना चाहिए, मैं जब समर्पण करूंगा तो सब जगह समृद्धि बढ़नी चाहिए, मेरी प्रमोशन होनी चाहिए, मेरा धन बढ़ना चाहिए, मुझे सुख प्राप्त होना चाहिए, मेरी पत्नी मुझसे आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, मेरा सम्मान करना चाहिए, सब जगह मेरा सम्मान बढ़ना चाहिए, इस प्रकार का विचार जो संन्यास्त प्रवृत्ति का गृहस्थ है वो नहीं करता है। वो सोचता है आश्लिष्य वा पादरताम विनष्ट माम अदर्शनम मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नातस्तु सएव नापर। वो क्या कहते हैं कि हे भय भगवान, आपकी सेवा करते हुए आपको अच्छा लगेगा तो गले लगा दीजिए, पास में रखिए अपने, नहीं अच्छा लगेगा तो ठुकरा दीजिए मुझे, आप जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए, लेकिन मैं मत प्राण नातस्तु सएव नापर, हर अवस्था में ठुकराए हुए अवस्था में और गले लगाए हुए अवस्था में, अपनाए हुए अवस्था में और दूर करी हुए अवस्था में, मैं आपका ही दास रहूंगा, आपका ही सेवक रहूंगा, आप मेरे आराध्य प्राणेश्वर बने रहेंगे। ये गोपियों की मनस्थिति जो है ये ठाकुर भक्ति विनोद जी अपने जीवन में दिखा रहे हैं। यह मत समझना कि उनके जीवन में कोई संकट नहीं आया, आप उनका चरित्र पढ़िए, इतने भयंकर संकट उनके जीवन में आए, ऋषिकेशन की तरफ से ऐसा सिद्धि चलाया उसने ऋषिकेशन ने कि उनके 10 बच्चे उनकी पत्नी और वो स्वयं भयंकर बुखार से मरणासन्न अवस्था में बिस्तर में पड़े हुए थे। तब वो डरे नहीं, अरे भयंकर काम कर रहा हूँ, लोगों ने उनको वार्निंग भी दिया था इसके चक्कर में पड़ो, ये बहुत बड़ा सिद्धि है, बहुत बड़ा योगी आदमी है, बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक करने वाला है, आपके परिवार को नष्ट कर देगा। उसने कहा भी था ठाकुर भक्ति विनोद याद रखना तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगा मैं, और मंत्र वंत्र बोल के ब्लैक मैजिक करके 2 ही दिन में 10 बच्चे पत्नी और पति स्वयं बिस्तर में पड़े हुए भयंकर बुखार से, हिलने को शक्ति नहीं है, फिर भी वो समाज को गलत भ्रष्ट मार्ग से बचाने के लिए हटते नहीं, हो कोई उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं, उसके बालों से चिंगारे निकलती थी सिद्धि होने की वजह से, उनको समझ में आया कि सारी शक्ति इसके बाल में है। नाई को बुलाया, कोई नाई आगे आने को तैयार नहीं, धर रहे उनको हाथ लगाते हुए बालों से चिंगारी निकल रही है। कौन ऐसे आदमी के बाल काट सकता है? फिर भी उसको काउंसिलिंग करते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, सैनिक का संरक्षण देते हैं, खुद खड़े रहते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ में उसके बाल कटवाते हैं। जैसे बाल कटते हैं वो शक्ति की नौकर गिर जाता है। अगर हमारे दिमाग से आदमी होगा तो बुखार आते ही बोला नहीं चाहिए हमको उठा, बिशिकिशन बने रहो आराम से। लेकिन वो ब्रिटिश के डर से नहीं, जन समाज के कल्याण के लिए, उनको भ्रष्ट मार्ग के प्रभाव से बचाने के लिए वो इतना बड़ा कष्ट लेते हैं। ये नहीं समझना, हम लोग सबने समझना चाहिए कि उनका भक्ति मार्ग बड़ा आसान था, बड़े धनी थे वो, ब्रिटिश लोगों का उन पर वरदस्त था, बड़े धन और रेल लाइन के घर में थी, उनका बंगला था, बहुत धन था उनके पास, तो क्या कमी थी उनको, क्या प्रॉब्लम था भक्ति करने के लिए? ऐसा नहीं है। भक्ति जीवन वो चाहे गृहस्थ का हो या सन्यासी का हो, ब्रह्मचारी का हो, जो सही भक्ति करता है उसके लिए माया की तरफ से परीक्षाएं होती रहती है। और तब भी जब वो भगवान की सेवा में एकाग्र बने रहता है, समर्पित अवस्था में, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। यही सन्यास प्रवृत्ति है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, उसकी विरक्ति का रहस्य जो है भगवान के प्रति आसक्ति है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब मायावादी लोग जो होते हैं वो भी बड़े विरक्त होते हैं, कभी कभी मायावादी लोगों की विरक्ति जो है वो भक्तों से बहुत भयंकर दिखाई पड़ती है। हिरण्यकश्यप ने तपस्या इतना किया था, कोई भक्त आज तक नहीं कर पाया। लेकिन क्यों उसकी वैल्यू नहीं है? क्योंकि वो स्वार्थ के हेतु राक्षसी प्रवृत्ति से की गई थी। ऐसा कोई भक्त भी नहीं है जिन्हें हिरण्यकश्यप जैसा तपस्या किया था। तो हम बोलेंगे हिरण्यकश्यप महान व्यक्ति, लेकिन नहीं, भगवान भावग्राही जनार्दन है, वो आपके हृदय का भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए श्रीधर कोलवेचा जो है वो तो गरीब बेचारा फटीचर आदमी, उसके केले खाने को जाते हैं रोज, दुर्योधन का भोग त्याग करके विदुर के घर में केले का छिलका खाने जाते हैं। तो ये जो मायावादी लोगों का विरक्ति है, ये भगवान को अलग रखकर स्वयं के लिए, अपने उद्धार के लिए किया हुआ विरक्ति है। जो भगवान को केंद्र स्थान में रखते हुए विरक्ति नहीं रखते, लेकिन जो वैष्णव विरक्ति है, वैष्णव सन्यासियों का विरक्ति जो है, वो भगवान को केंद्र स्थान में रखा हुआ विरक्ति है। और इस विरक्ति को बीज रूप में हम सब गृहस्थ जो है स्वीकार कर सकते हैं। हमें सोचना यही है केवल अपने आप को केंद्र स्थान में न रखते हुए भगवान को केंद्र स्थान में रखना है। हमारे जीवन में जब धीरे धीरे हम भगवान के नाम का जप करने लगते हैं तो फिर अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, फिर निष्ठा उत्पन्न होती है, निष्ठा के बाद में रुचि उत्पन्न होती है, रुचि के बाद में आसक्ति उत्पन्न होती है। तो जब इस अवस्था में हम आते हैं तो अपने आप हम भौतिक कार्यों से निवृत्त होते हुए नजर आते हैं। प्रभुपाद जी इस भगवद्गीता के 18वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन को प्रश्न पूछते हैं कि विरक्ति क्या है, संन्यास क्या है, तो कृष्ण भगवान उनको उत्तर देते हैं कि अपने लिए इंद्र तृप्ति के लिए जो कार्य करते हैं उन कार्यों को त्याग करके केवल भगवान की सेवा में कार्य करने के लिए ही संन्यास कहते हैं, और अपने कार्यों का जो फल है उसको त्याग देना का व्याख्या है विरक्ति का। वैराग्य का मतलब क्या है? कि जो भी हम कार्य करते हैं उसके फलों को त्याग देना। लेकिन संन्यास का उन्होंने व्याख्या क्या किया है? कार्य ही नहीं करना, ऐसे अपने कार्य ही भगवान के लिए ही करना, वर्क फॉर ओनली कृष्णा। ऐसे नहीं कि काम कुछ अलग करेंगे फिर उसका फल जो है वो भगवान को अर्पण करेंगे। कर्म का फल भगवान को अर्पण करने की विधि जो है वह दुय्यम मानी गई है, शायद उसका दर्जा जो है 8वां और 9वां है। पहले हम कर्म को भगवान को, कर्म का फल भगवान को देंगे, फिर बुरा कर्म करना ही छोड़ देंगे जो स्वार्थ के लिए किया गया है, फिर कर्म ही ऐसा करेंगे जो भगवान के लिए किया है, उसको अकर्म कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब क्या होता है? कि वो कर्म करना जो केवल भगवान के आनंद के लिए हो, बाकी सारे कर्म जो हमारे आनंद के लिए हम करते हैं उसको छोड़ ही देना बिल्कुल, और केवल ऐसे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता है, और ऐसे कर्म के फल से भगवान अपने भक्तों को मुक्त कर देते हैं। और अगर ऐसे कर्म करने के पश्चात भी जीवन में कोई दुख आता है तो वो दुखों से भगवान अपने भक्तों के हृदय की जो अशुद्धियां हैं उसको नष्ट कर देते हैं। अगर हमारे अंत में कोई किंतु परंतु, कोई विकल्प है, कोई अनर्थ है, तो ऐसे उनके लिए ही किए गए कर्मों के द्वारा जो भी फल मिलता है वो दुखों को दुख भरा करके वो उसके हृदय के अनर्थ को भी नष्ट कर देते हैं। उसी का अर्थ है योगक्षेमम वहाम्यम, मतलब क्या, तुम्हारे अंदर जो गलतियां हैं उसको मैं स्वयं नष्ट करता हूँ, उसे भगवान करते हैं, उसके लिए योजना बनाते हैं। और उन योजनाओं को वो जो भक्त है वो स्वेच्छा से धन्यवाद की भावना से ऋणी भावना से स्वीकार करता है। ऐसे नहीं, अरे भगवान मैंने आपके लिए इतना भक्ति किया, इतना त्याग किया, इतने बीज रूप से विरक्ति को लेकर मैंने आपके लिए सेवा किया और आप मुझे कैंसर दे दिया, आपने मुझे अपने पद से गिरा दिया, आपने मुझे भ्रष्ट कर दिया। नहीं, उसके बावजूद भी जो भी कष्ट उसके जीवन में आएगा वो कहेगा कि भगवान थैंक यू वेरी मच, जो भी आपने किया है वो सही किया है। यीशु क्रिस्त बाइबल में कहते हैं कि जो प्याला आपकी तरफ से आ रहा है वो उसको मैं क्यों ना पीऊं, चाहे उसमें अमृत हो या विष हो, क्योंकि वो केवल इस सत्य पर आया है कि आपके पास से आया है, इसलिए मैं उसे पीऊंगा जरूर। ये श्रद्धा जो है विरक्त मन व्यक्ति के मन में होती है कि भगवान क्योंकि आपकी तरफ से आया है मैं इसको स्वीकार करूंगा। वो मेरे इंद्रियों के लिए बहुत कष्टमय होगा या मेरे इंद्रियों के लिए सुखमय होगा, मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं, केवल आपके पास से आया इसको सोचकर मैं उसको पीऊंगा। ये विरक्ति का बीज है। अगला बीज यीशु क्रिस्त बताते हैं, दाय विल बी डन, मतलब क्या, मेरी इच्छा कुछ भी होगी कि मैंने आपकी सेवा में ये कार्य किया है इसका ऐसे ऐसे फल आना चाहिए, मैंने मेहनत किया है, डोनेशन इकट्ठा किया है, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कुछ भी बाधा हो गई, डिले हो गया, कुछ भी हो गया, थैंक यू माय लॉर्ड, मेरा काम आपकी सेवा करना है, मेरी आपके समर्पण में की हुई सेवा जो है उसका फल भी आप ही चुनिए, उसमें भी मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। ये विरक्ति का लक्षण। हमारा काम केवल एक ही है, भगवान की सेवा में लगे रहना, और जो भी हमको सुविधा प्राप्त होती है भगवान के मंदिर की तरफ से, भगवान की तरफ से अपने गृहस्थी के व्यवसाय में, अपने पेशे में, नौकरी में, वो सारा धन जो है वो भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए इस्तेमाल करना, अपने परिवार को पालने के लिए भी हो भगवान की भक्ति में और अपने मंदिर की सेवा के लिए भी हो, हर तरफ से उस धन का इस्तेमाल भगवान की सेवा में करना, और जो भी शक्ति है, जो भी बुद्धि है, जो भी विचार है, वो भी सब भगवान की सेवा में अर्पण करना। और उसका सब करने के बाद भी जब बुरे फल मिलेंगे, उसके अप्रिय इंद्रियों को अप्रिय फल मिलेंगे, उसके लिए भी धन्यवाद करना। ये विरक्ति जो है वो परिपूर्ण विरक्ति है। यहां तक कि आपकी सेवा में भी मैं कार्य करूंगा तो भी मैं अनुकूल फल की अपेक्षा नहीं करूंगा। रूप गोस्वामी जी ऐसे विरक्ति का व्याख्या करते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में। वो क्या कहते हैं कि आप गृहस्थी जीवन में रहो, संन्यास बनो, ब्रह्मचारी रहो, लेकिन एक तत्व को अपनाओ। वो तत्व क्या है? आनुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जयेत। कोई भी कार्य करते हुए ये सोचना कि ये भगवान को पसंद आएगा, गुरु महाराज को संतुष्ट करेगा, तो ही उसको स्वीकार करो और तो ही उसको करो। और अगर कोई कार्य करना आपको लगता है कि गलत है तो चूंकि इससे गुरु महाराज को कष्ट होगा, वो अप्रसन्न होंगे, भगवान को संतुष्ट होगी नहीं होगी, तो कुछ त्याग दो। कितना भी अच्छा लगेगा आपको वो कर्म, उसके फल के स्वरूप में वो अच्छा रहेगा, वो करने में भी आनंद आएगा, लेकिन अगर वो गुरु महाराज और कृष्ण भगवान को, वैष्णव समुदाय को अप्रसन्न करने वाला होगा तो उसको त्याग देना चाहिए। और कितना भी हमको कष्ट होगा उस करने में, कितने भी उसके फल अप्रिय होंगे, हमारी उसमें निंदा होगी, हमारा उसमें सम्मान नष्ट हो जाएगा, हमारा धन नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो कार्य करने से मेरी भक्ति में वृद्धि होगी, मेरी भक्ति में प्रगति होगी और साथ साथ गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, वो कार्य को अप्रिय होने पर भी स्वीकार करना चाहिए। ये सबसे बड़ा, इसे कहते हैं कि द हाइएस्ट प्रिंसिपल ऑफ विरक्ति, संन्यास यही है। इसको आप सफेद वस्त्र पहनकर गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपना सकते हो। अगर हम कोई कार्य करने के पहले पूछेंगे मन में कि क्या ये कार्य भगवान के लिए अनुकूल है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर उत्तर हाँ है प्रामाणिकता से, तो उसको करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई द्वंद्व है कि मैं समझ में नहीं आ रहा है कि प्रतिकूल है कि अनुकूल है, वास्तव में समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन है, तो अपने शिक्षा गुरु के पास जाइए, उनसे प्रश्न कीजिए, वो आपको बता सकते हैं अपने अनुभूति के द्वारा, अपने एडवांसमेंट द्वारा, उनकी प्रगति के द्वारा समझ सकते हैं वो। अगर उनको भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप गुरु महाराज को पूछिए, क्योंकि साक्षाधरित्वे न समस्त शास्त्रे उक्तस तथा भाव सद यत एव सद्वी किंतु प्रभोरिया प्रिय एव तस्य वंदे गुरु सुचरणारविंद। गुरु महाराज जो है उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं, हमारे लिए गुरु महाराज के मुख से, चैत्र गुरु के रूप में उनको प्रेरणा देकर गुरु महाराज के मुख से हमको भगवान आदेश देते हैं। तो अगर आप श्रद्धा से और प्रामाणिकता से गुरु महाराज के पास जाएंगे और ये प्रश्न करेंगे क्या ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है, तो भगवान उनके मुख से आपको आंसर देंगे कि ये अनुकूल है, फिर वो कष्टमय भी होगा तो आपको उसको अपनाना है। सब मार्ग भगवान ने बताए हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, तो गुरु की संतुष्टि यही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। जब तक गुरु संतुष्ट है तो दुनिया अगर असंतुष्ट रहेगी तो क्या प्रॉब्लम है हमको, अगर दुनिया हम पर प्रसन्न है और भगवान और गुरु हमारे असंतुष्ट है तो संतुष्टि का क्या लाभ है, किम महा परेण। अगर आप संतुष्ट है भगवान तो दुनिया अप्रसन्न होने से हमको क्या मतलब है, और अगर आप अप्रसन्न है तो सब कुछ ठीक होने से क्या मतलब है, हमको कोई वैल्यू नहीं उसका। इस तरह से आनुकूल्यन संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। और एक भगवान कहते हैं भगवान की भगवद गीता में, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्चते। कैसा हमारा निर्बंध यानी कि वैराग्य कैसा होना चाहिए, हर हमारा वैराग्य जो है भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हर वैराग्य पूर्ण कार्य जो है, हर विरक्ति हमारी, हर हमारा त्याग जो है वो भगवान की सेवा में भगवान की संतुष्टि को अटैच होना चाहिए। इसलिए निर्बंधे कृष्ण संबंधो, उसी को भगवान स्वयं व्याख्या करते हैं वैराग्यम उच्चते, उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। कैसा युक्त वैराग्य, हमारे ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी महाराज प्रभुपाद जी के परम प्रिय गुरु महाराज, हाँ क्या करते थे उस समय, केवल जो वायसराय था ना, रानी का प्रतिनिधि जो कलकत्ता में रहा करता था उस समय, पूरे ब्रिटिश राज का प्रतिनिधि था वो वायसराय, उसके पास एक रोल्स रॉयस गाड़ी थी, और पूरे भारतवर्ष में दूसरी रोल्स रॉयस गाड़ी ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी के पास में थी। सब लोग निंदा करते थे, कह रहे सन्यासी है तुमको पैदल भ्रमण करना चाहिए, देश देश में जाकर नदी किनारे पेड़ के नीचे रहना चाहिए, लेकिन वो वायसराय के पास जो गाड़ी है वो गाड़ी उनके पास में थी और उसमें वो चलते थे, और उनके पीछे भारतीय जनता भागती थी गाड़ी को देखकर, अरे सेकंड गाड़ी इनके पास में। हमारे भारत में कैसे मालूम है ना, कोई बड़ा कुछ हो गया तो बच्चे उसके पीछे भागते हैं ना देखने के लिए, वैसे आम जनता उनकी गाड़ी के पीछे भागती थी। बहुत सारे ज़्यादा लोग भागने लगे तो गाड़ी रोकते थे और प्रवचन करते थे कृष्ण भगवान के विषय में। तो उनका गाड़ी में बैठना जो था खुद के सम्मान के लिए था कि मेरे पास रोल्स रॉयस गाड़ी है, ये दिखाने के लिए घूमते नहीं थे वो। जो लोगों को आकर्षित करके कृष्ण की ओर ले सकता है वो उसको अपना देते। उसी भावना से पांडवों ने राज्य ग्रहण किया था भगवान के आदेश के ऊपर। अर्जुन तो कह रहे थे हमको नहीं चाहिए राज्य, हम तो भिक्षा मांगेंगे जंगल में जाकर, लेकिन क्यों राज्य ग्रहण किया, जो भगवान के आनंद के लिए और सेवा के लिए अनुकूल है वो उन्होंने स्वीकार किया, जो उनको पसंद नहीं था फिर भी उन्होंने किया, ये उनकी विरक्ति है। हाँ तो ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी तो है उनको कोई संदेह नहीं था, क्योंकि उनके मन में उस कार के प्रति कोई लोभ नहीं था, उस कार में बैठकर सैर करने का और मजा करने का कोई उनके मन में हेतु नहीं था, इसलिए वो लोगों की निंदा सहन करते हुए उस कार में बैठकर जगह जगह जाकर प्रचार करते थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अरे अगर मैं कहता था कि मैं सन्यासी हूँ और चल के ही जाऊँगा तो इस पूरे जीवन में अमेरिका तक पहुँच नहीं पाता था मैं। मैंने हवाई जहाज को स्वीकार किया तब मैं अमेरिका पहुँचा, बोट को स्वीकार किया फिर अमेरिका पहुँचा, तो उसके बाद मैं 12 साल में 14 बार भ्रमण किया विश्व का। अगर मैं कहता मैं चल के जाऊँगा तो सोचता था मुमकिन क्या। उन्होंने जहाँ जहाँ जरूरत था विमान ग्रहण किया और 14 बार जाकर 108 जगह पर मंदिर स्थापन किया, हजारों भक्तों को प्रचार किया। ये सही सन्यासी है जो तो खुद के लिए स्वीकार नहीं कर रहे। वो कहते थे हमेशा कि मेरा मन जो है वो हमेशा राधा दामोदर के मंदिर में, जो छोटे से मेरे कमरे थे जिसका किराया केवल 5 रुपया था, जिसके दरवाजे में अच्छा पेंट नहीं था, जो दरवाजा बहुत अच्छी लकड़ी का नहीं बना हुआ था, जहाँ पर मैं झाड़ू मारता था रोज और भिक्षा मांग कर लोही बाजार में जाकर मैं ग्रहण करता था अन्न, उसको खाता था, उस घर की मुझे बड़ी याद आती है। लॉस एंजलिस में महल समान कमरे में बैठे हैं वो, ऐसा 5-स्टार कमरा आप जाके देखे लॉस एंजलिस में, हाँ न्यू द्वारका नाम दिया है उसको, उनका कमरा मैंने देखा है, इतना बड़ा आलीशान उनका बैठने का जगह है, उनका सोने का जगह है, उनका बाथरूम है, टब है, बेसिन है, ऐसे सुंदर गोल्डन उसमें नल लगे हुए हैं, हाँ बैठने का कुर्सी देखिए, उनका आराम करने का बिस्तर देखिए, उनका कथा करने का जगह देखिए, एकदम सुंदर फर्स्ट क्लास, उनका खुद का गार्डन बना हुआ है, वो भक्तों ने बड़े प्रेम से उनको अर्पण किया था। लेकिन उसमें बैठे हुए हाँ बड़ी थाली में भोजन करते वो कह रहे हैं कि मेरे लिए वही महल है जहाँ पर मैं वृंदावन में रहता था, लेकिन आज इस समय प्रचार के समय उस मेरे छोटे से महल में वृंदावन के राधा दामोदर के मंदिर में रहकर आनंद लेना मेरे लिए इंद्रिय भोग है, और यहाँ पर रहना मेरे लिए तपस्या है, तुम्हारे द्वारा दिए गए ऐश्वर्य को स्वीकार करके तुमको भक्ति में प्रेरणा देना ये मेरे लिए बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी ये मेरे तपस्या जो है वो मैं स्वीकार करूंगा। आपको लगता होगा कितना बढ़िया है, प्रभुपाद जी तो इतना बढ़िया आनंद कर रहे हैं और तो हमको कुछ अलग बता रहे हैं, खुद तो इतना बढ़िया भोग ले रहे हैं, अच्छा अच्छा व्यंजन खा रहे हैं और हमको बोल रहे हैं सब लोग भक्त बनो, भगवान का मांस खाना छोड़ दो, ये करो वो करो। लेकिन वास्तव में हृदय में क्या था उनके, उनके लिए वास्तव में वो जो ऐश्वर्य था वो तपस्या थी, जो तपस्या के रूप में गुरु के आनंद के लिए प्रचार करने के लिए वो स्वीकार करते थे। लेकिन उनका मन हमेशा श्री वृंदावन धाम के दो छोटे से कमरों में था, इसमें कोई सुविधा नहीं थी, और बड़े आनंद से वो विहार कर रहे थे। आप जानते हैं सब लोग ना, जब वृंदावन में वो 3-4 साल रहे, उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया वहाँ बैठकर। अभी भी लोही बाजार के कुछ विद्यमान बूढ़े जो है मुझे जानते हैं, वो कहते हैं कि हमारे दुकान में ये भिक्षा करते थे और आकर अपनी रोटी खाते थे। दादा दामोदर के जो गोस्वामी जी हैं, जो बूढ़े गोस्वामी, वो कहते हैं कि रात को दिन भर जो है सुबह से लेकर रात तक अनुवाद करते थे बैठकर। हम लोग महाप्रसाद जो है दामोदर जी का उनके दरवाजे पर रखते थे, वो शाम तक पढ़ा रहता था, इतने मग्न हुआ करते थे वो अपने सेवा में। और शाम को जब बाहर निकलते थे, पहले सब यात्रियों के जाने के पश्चात, दर्शन बंद होने के पश्चात पूरे मंदिर की झाड़ू लगाया करते थे, रूप गोस्वामी के समाधि की झाड़ू लगाया करते थे आंखों में आंसू लेकर, और फिर जाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। हाँ, वो कहते थे, और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो जो निवास था मेरा वृंदावन का, वो सबसे आनंद में था मेरे लिए, इतना आनंद का मैंने अनुभव किया। तो आप लोग क्या कहते, अच्छा था ना, वहीं रहते आप लोग, अच्छी तरह से भजन करते, फर्स्ट क्लास, सब संत लोग भी यही करते थे। अरे महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो छोड़ के, सब लोग बुढ़ी अवस्था में आके वृंदावन में रहते हैं, ताकि शरीर कभी छूट जाएगा तो क्या मालूम व्रज का वास मिलेगा, व्रज के व्रत में शरीर छूटेगा तो भगवान का धाम प्राप्त होगा। तो जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं जाऊँगा वेस्टर्न वर्ल्ड में, उन्हें सबसे पागल व्यक्ति हो आप, सन्यासी हो, ब्रज का सेवा प्राप्त है आपको, ब्रज में निवास प्राप्त हो गया है, दामोदर जी के मंदिर में निवास कर रहे हो, और सब कुछ छोड़ के कहाँ जा रहे हो, जहाँ व्यभिचार होता है, नशा होती है, जुआ खेला जाता है, मांसाहार तो आम बात है उनकी, हर चीज जो जीवित है उसको खा जाते हैं लोग, इतना फ्रस्ट्रेटेड है वो, वैफल्यग्रस्त है जीवन में, कोई संस्कृति नहीं है, कोई विवाह का संस्था नहीं है, कुत्ता बिल्ली की तरह जीते हैं। वहां पर जाओगे सात समुद्र को पार करते हुए, तुम सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हो। लेकिन निजी अपने आध्यात्मिक आनंद को भी उन्होंने त्याग किया जीव का कल्याण करने के लिए। ये साल उनके 50 साल हो गए संन्यास, ये उनका संन्यास प्रवृत्ति है। हाँ, उनके लिए बाहरी रूप से बेस्ट क्या था, वहीं रहना और वहीं भजन करना विरक्ति में। लेकिन उस तथाकथित आनंद को उन्होंने त्याग किया और गए एकदम विपरीत जगह पर, जहाँ पर लोगों का उन्होंने उद्धार करने के लिए सब कुछ छोड़कर ऐश्वर्य को स्वीकार किया। इसलिए हम लोग, आप सब लोग यहाँ पर बड़े गर्व से बैठे होंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाकर प्रचार किया। तो संन्यास का बीज क्या है, कि तथाकथित आध्यात्मिक आनंद को भी गुरु की प्रसन्नता के लिए छोड़ देना, और उसी में आनंद को देखना जिसमें गुरु जी का आनंद है, उसी में आनंद को देखना जिसमें गुरु की संतुष्टि है। भगवान जिसमें प्रसन्न हो जाए, वो मेरे लिए कष्ट का हो या सुख का मार्ग हो, उसको स्वीकार करना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा मार्ग है। और प्रभुपाद जी ने, ठाकुर भक्ति सुदान जी ने अपने जीवन में इसको दिखाया है कैसे करना है उसको। और वही प्रभुपाद जी जब 12 साल उन्होंने सारे विश्व का भ्रमण किया, कितने कष्ट उन्होंने सहन किए हैं, हाँ, इस्कॉन को स्थापना करने के लिए कैसे कैसे भक्त उनके पास में आए, नशा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, जुआ खेलने वाले, एकदम आचरण उनका हीन आचरण था, उनको उन्होंने परम वैष्णव बनाया। और सब करके 12 साल के बाद जब वृंदावन आए वो, और वृंदावन में आखिरी सांस तक उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया। आप टेप देखिए उनका, तो नाम है उसका टेप का, उसमें उनका आखिरी समय का रिकॉर्डिंग है उसके अंदर। इनका शरीर एकदम जीर्ण हो चुका है, उनका हाथ जो था उसको उठाने के लिए उनको शक्ति नहीं थी, उनकी जो आंखों की पलके थी वो भी भक्त लोग उसको उठाते थे दर्शन कराने के लिए, कुछ दिखाना है तो, और हाथ को यहाँ वहाँ करते भक्त लोग उसको उठाते थे, उनको बिल्कुल शक्ति नहीं थी, उनका चर्म और उनका हड्डी जो एक रूप हो चुका था, कोई शक्ति नहीं। 3 महीने तक उन्हें खाना भी ग्रहण नहीं किया था, लेकिन आखिरी सांस तक श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के ब्रह्म सम्मोहन लीला के श्लोकों का अनुवाद करते थे वो, आखिरी सांस तक उन्होंने किया। ये विरक्ति है। इसका मतलब क्या है, विरक्ति भगवान के संतुष्टि में लिप्त हो गई है, तब जाकर वो स्वीकृत हो जाती है भगवान की तरफ से। हमारी तरफ से हमने 15 साल भोजन नहीं किया, केवल फलाहार किया, भगवान बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते। भगवान कहते हैं ये तो ऐसी तपस्या करने से, ऐसा विरक्ति से हृदय पत्थर बनता है, लेकिन जब भगवान की संतुष्टि के लिए त्याग किया जाता है तो हृदय वो कोमल बन जाता है, उसके अंदर भाव और प्रेम का आविर्भाव होता है। इसलिए हम किसी व्यक्ति के कहते हैं ना कि ये वो जो चैतन्य महाप्रभु लीला में ब्रह्मचारी आते हैं वो कहते हैं कि मैं केवल दूध पीता हूँ, मुझे आपके रात के संकीर्तन में भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, कोई भी व्यक्ति केवल दूध पीकर मेरे लीला में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन भक्त लोग कहते हैं महाराज जी महाप्रभु जी गौरांगा ये तो बड़ा व्रत व्यक्ति है, बड़ा समर्पित व्यक्ति है, केवल दूध पीता है कुछ नहीं करता है। नॉट पॉसिबल, क्योंकि भगवान जो है हमारी विरक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं, हमारी विरक्ति के पीछे क्या भावना है उससे प्रभावित होते हैं। विरक्ति हम किस लिए कर रहे हैं? लोगों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, शिष्यगण इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं, धन इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं, प्रभाव जमाने के लिए कर रहे हैं। बहुत लोग करते हैं ना ऐसे, क्योंकि विरक्ति से लोग प्रभावित होते हैं। अरे क्या बात भी है, और एक गाजर खाता है रोज, इतना बढ़िया व्यक्ति है, सब नमस्कार करते हैं, महाराज आप तो बड़े बड़े महाराज हो। लेकिन भगवान जानते हैं इसके हृदय में क्या है। वही महाराज जी जो केला खाते हैं दिन में एक बार, बाद में फिर आपको पेपर में बात खबर आएगा कि ये औरत के साथ में रात को उसका वीडियो शूटिंग किया गया, क्योंकि विरक्ति के पीछे भावना गलत है। महाप्रभु चैतन्य को, कृष्ण भगवान को, गुरु महाराज को वो विरक्ति पसंद है जो केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए की गई है। हम लोग एकादशी में निर्जला करते हैं या तो जल पीकर उपवास करते हैं, फल खाकर करते हैं, क्या हम भगवान को तुष्ट करने के लिए कर रहे हैं कि अपना बड़ापन करने के लिए कर रहे हैं? ये हमको सोचना जरूरी है। अगर हम 16 माला करते हैं, कोई 32 करता है, कोई 64 करता है, कोई 108 करता है, क्या हम वो सब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर रहे हैं कि अपना आदर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? ये हमको सोचना जरूरी है। अगर हमारे जीवन में, गृहस्थी जीवन में अगर इस अध्याय का सार हमको उतारना है तो हमको प्रश्न पूछना है, क्या ये भगवान के संतुष्टि के लिए हम कर रहे हैं? क्या हमारा मन, हमारी भ्रष्ट बुद्धि हमको विचलित कर रही है, गलत मार्ग पर लेके जा रही है और अपना आनंद, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए सब कार्य किए जा रहे हैं? अगर उत्तर हाँ है तो उसको छोड़ देना चाहिए। इट इज़ बेटर टू ईट फुल प्रसाद ऑन एकादशी एंड गो फॉर प्रीचिंग। प्रभुपाद जी कहते थे, कुछ लोग भक्त लोग उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी आज हम प्रचार में नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है? नहीं प्रभु जी, सब महाराज जी सब भक्त लोग जो उपवास कर रहे हैं उनके अंदर शक्ति नहीं बची आज, सब लोग निर्जल उपवास कर रहे हैं इसलिए उनके शरीर में शक्ति नहीं है, इसलिए वो कहेंगे आप पुस्तक वितरण करने के लिए हम नहीं जाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा सब लोग प्रसाद खाओ, पेट भर पेट भर पेट खाओ और जाओ पुस्तक वितरण करो। सन्यासियों को वो कहते थे अगर आप ऐसी जगह पे गए जहाँ पर आपको कुछ खाना पड़ेगा जो आप नहीं खाते हैं तो उसको खाओ और प्रचार करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जहाँ आपको मुमकिन है वहाँ पर भी खाओ। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा उपवास, हमारा त्याग, हमारी विरक्ति तब तक अर्थपूर्ण है जब तक वो भगवान की संतुष्टि के लिए हम करते हैं। और जगदानंद पंडित जो है वो भी इसकी व्याख्या करते हैं कि सन्यासी भाई, वैरागी भाई, ग्राम में कथा ना कोरी बे, ग्राम में कथा ना सुनी बे, ग्राम में वार्ता ना कोई बे, ग्राम में कथा ना सुनी बे काने, और ग्राम में वार्ता ना कोई बे, ये बे मिले बे आने। ये भी विरक्ति का लक्षण है। लोग मिलते हैं हमको, भक्त लोग मिलते हैं, अरे ये व्यक्ति तो शेयर मार्केट से, चलो उसको पूछताछ कर ले शेयर मार्केट में क्या पोजीशन है, कहाँ पर डाले पैसा, कहाँ पर, अरे हम भक्ति करते हैं हमारा पैसा जो है वो सही जगह होना चाहिए, तो हम भक्तों से बैठ के चर्चा करेंगे अभी क्या पोजीशन है मार्केट की, तो वो कहते हैं ये सही नहीं है। ग्राम में कथा ना कोरी बे, दुनियादारी का बातें जो हैं वो भक्तों से मिलकर नहीं करना चाहिए। भक्तों बहुत रेयर हैं, भक्त लोग दुर्लभ लोग हैं, जब भी वो मिलते हैं वो जो कम समय मिलता है भक्तों के साथ में, वो कम से कम उस कम समय में हम क्या करना चाहिए, उनके साथ सत्संग करना चाहिए, उनके साथ सत्य के विषय में चर्चा करनी चाहिए, उनके साथ में वो चर्चा करनी चाहिए जो सत्य के विषय में अधिक प्रगति करने में हमको प्रेरणा मिले, वो सही विरक्ति है। हमको टेम्पटेशन हो रहा है कि उनका हम घर के बारे में बात करें, उनके बारे पैसे के बारे में बात करें, लेकिन वो छोड़कर कैसे उनके हृदय में जो कृष्ण की भक्ति है उससे कैसे हम प्रेरणा लें, ये विरक्ति है। हाँ फिर क्या कहते हैं, भालो ना खाई वो, भाले ना पोरी वो, हृदय राधा कृष्ण सर्वदा भोजी वो सेवी वो। उसका मतलब क्या है कि जब हम बढ़िया अन्न खाते हैं कोई, तो उसके द्वारा हमारे मन में विकार उत्पन्न होते हैं। अगर वही बढ़िया अन्न हम खाएंगे कि ये कृष्ण का प्रसाद है, यही शाक का कृष्ण आस्वादी लो, तो फिर आपके ऊपर उसके अन्न का प्रभाव विकार रूप में नहीं होगा। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे कथा में कि गुरु भोग क्या है और गुरु त्याग क्या है, हाँ, और गुरु सेवा क्या है, हमारी भावना है। अगर हम प्रसाद लेने बैठेंगे और सोचेंगे कि मुझे गुलाब जाम मिलना चाहिए, मुझे वो बड़ा पसंद है, मुझे आज का जो पुलाव किया है वो बहुत बड़ा पसंद है, मुझे जो सब्जी करेले की है वो पसंद है, अगर उसके लिए प्रसाद लेंगे तो उस प्रसाद का जो परिणाम है वो विकार रूप में हमारे ऊपर पैदा हो जाएगा। आत्मा के लिए हमारी पुष्टि जो होगी तब होगी जब हम प्रसाद को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। अगर कोई हम प्रभुपाद जी इसमें वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में, अगर हम किसी कॉलेज में जाएंगे प्रचार करने के लिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम अपने भक्तों को शर्ट पैंट टाई पहन के भेजते हैं वहाँ लेक्चर देने के लिए, प्राध्यापकों को, स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को वगैरह देने के लिए, और मंदिर में हम लोग धोती कुर्ता पहन कर रहते हैं। तो कहते हैं कि समय के अनुसार हम अपने भक्तों को उस प्रकार के अनुकूल वस्त्र पहनने को आदेश देते हैं। तो उन भक्तों को उस समय ना सूट बूट से आसक्ति होती है, ना मंदिर में आकर धोती कुर्ता से आसक्ति होती है, उनको आसक्ति केवल भगवान की सेवा करने में होती है। इसलिए प्रभुपाद जी का एक मैंने प्रवचन पढ़ा जो इस अध्याय में प्रभुपाद जी ने दिया है, वो कहते हैं कि ये सारा जो वर्णन सातवें अध्याय स्कंद के अंदर 13वें अध्याय में किया है उसका सार एक ही है, गो एंड गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस टू अदर्स। ये सारे वर्णन का सार ही वही कहते हैं, लोगों को भगवान के लिए परिचय कराना, यही हमारे सारे वस्त्र का, सारे भोजन का, सारे सेवा का, सारे जप का सार है, वो कहते हैं। और ऐसी व्यक्ति भगवान को पसंद है। इसलिए हम देखते हैं, हमने देख दर्शन किया है, हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज 1986 में क्या था मैंने देखा, उन्होंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंस एंड रिलीजन, सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, उसमें हमारे महाराज जी सूट बूट पहनकर टाई पहनकर स्टेज पर आए थे और उन्होंने प्रवचन दिया था साइंटिस्ट लोगों को, रसराज प्रभु वो सारे जो बी आए जो भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के ब्रह्मचारी थे, सब लोगों ने बाल बढ़ाए, शिखा को कम कर दिया और प्रैक्टिस किया धोती कुर्ता छोड़कर सूट बूट पहनने का, और सब साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर सब लोग, ये ब्रह्मचारी लोग जो है बाल बढ़ाकर अपने टाई लगाकर उन्होंने बड़ा इंग्लिश में साइंटिफिक प्रवचन दिया पूरा क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम फिजिक्स और सब के विषय में। क्यों किया ऐसा सब कुछ ये? क्योंकि वो जानते थे कि जो उनको क्या कहते जचेगा, जो उनको इंस्पायर करेगा, उस रूप में जाकर उन्होंने उनको प्रचार किया। फिर जाकर सूट बूट को कंटिन्यू नहीं किया, कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, मंदिर में आए, सब सर मुंडवाया, धोती कुर्ता वापस चालू हो गया। तो सार क्या है? भालो ना खाई भाई भालो ना पोरी भाई। हाँ, आप अच्छा खाना भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन केवल प्रचार के लिए आवश्यक हो तो। समझो आप किसी बड़े आदमी के घर में लेक्चर देने गए और बड़े आदर से, सम्मान से और प्रेम से उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जो आप आमतौर पर नहीं खाते हैं, तो उस समय उसको खाना आपकी विरक्ति होगी। कोई आदमी देखेगा, देखो प्रभु जी क्या क्या खा रहे हैं, मंदिर में नहीं बोलते हैं लेकिन देखो वहाँ पर सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं इस समय उसको बना कर दूंगा तो जिस भावना से उसने बनाया है उसका दिल दुखेगा, फिर मैं उसको प्रेरणा नहीं दे पाऊंगा। हमने देखा है कई सन्यासियों को ऐसे करते हुए, लेकिन जब समय आएगा, मौका होगा, चांस होगा, तो फिर वो सब कुछ नहीं खाएंगे, एकदम सिंपल खाना खाएंगे। तो वो ये सब खाना भी उनका जो है वो स्वयं के लिए नहीं है, जो प्रचार के लिए अनुकूल है, जो प्रचार के लिए श्रेष्ठ है, वो ऐसा खाएंगे उधर जाके। और खुद का मौका रहेगा तो हमारे जीवन के लिए भक्ति के लिए क्या आवश्यक है वो खाना खाएंगे। वही भालो ना पोरी वे, मतलब अच्छे वस्त्र मत पहनो, लेकिन वो पहनेंगे तब जब वो आवश्यक है। तब उस समय हमारे तत्व को नहीं 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 मैं तो कभी पहनता नहीं हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा तो प्रवचन दूंगा ही नहीं, नहीं। उस समय अगर वो वस्त्र पहनना आवश्यक है वो पहनिए, विरक्त भाव से पहनिए कि ये मैं सेवा के लिए पहन रहा हूँ, और आके उसको छोड़ दीजिए घर पे। प्रभुपाद जी कहते थे फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, पहले श्रोताओं के अनुकूल वस्त्र को धारण करो और फिर प्रवचन दो। उसी तरह से अगर मंदिर में प्रवचन दे रहे हैं तो धोती कुर्ता में दे रहे हैं, लेकिन अगर कहीं मेडिकल कॉलेज में, अमेरिका में मेडिकल हॉस्पिटल में अमेरिकन डॉक्टर के सामने प्रवचन करना है तो फिर सूट बूट पहन के जाइए फर्स्ट क्लास, उसमें तिलक भी मत लगाइए, गो एज अ साइंटिस्ट एंड गिव लेक्चर। मसाला वही है लेकिन वो उसका स्वरूप अलग कर दिया है, उनकी थाली में, उनके भोजन के रूप में, उनके जो अच्छा लगे उनको रुचि में वही देना है, सार रूप में जो उनको अच्छा लगे, जो उनके लिए अच्छा है, लेकिन उनको जिस प्रकार से अच्छा लगे उस रूप में देना है। ये तपस्या है। आपको लगेगा कि हमको प्रवचन करना तो कथा डायरेक्टली बोलना हमको अच्छा लगता है बहुत, ये घुमा फिरा के प्रेजेंटेशन और वो स्लाइड प्रोजेक्टर और ये ओपीडी क्या कहते हैं उसको ओवरहेड प्रोजेक्शन करना बहुत वो अच्छा लगता नहीं, लेकिन अगर वो उस प्रकार के लोगों को सुनने से प्रेरणा मिलती है तो उस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। आप कहेंगे हमको कंप्यूटर अच्छा लगता नहीं, ये सब माया है, हमको नहीं अच्छा लगता है, कौन सीखेगा इसको। लेकिन अगर आज के ज़माने में प्रचार करने में कंप्यूटर सीखना आवश्यक है तो सीखना चाहिए। यही आपकी विरक्ति कि आप उसको सीख रहे हैं, क्योंकि आपकी आसक्ति आपके नियमों से नहीं है, आपकी आसक्ति भगवान के संतुष्टि से। हमारा हर कार्य अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सबसे बड़े वैरागी बन सकते हैं। हमारा उपवास और हमारा खाना दोनों विरक्ति का प्रमाण हो सकता है। एट टू टाइम्स, एक टाइम आप बहुत बढ़िया भोजन कर रहे हैं, एक समय आप बहुत तपस्या का भोजन कर रहे हैं, दोनों विरक्ति के रूप में भगवान के संतुष्टि के लिए होगा तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। अगर जरूर है हमको उपवास छोड़कर खाकर प्रचार करना चाहिए, और अगर मुमकिन है तो निर्जला उपवास करना चाहिए। हाँ, कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं, हमारा स्टैंडर्ड एक ही है, भगवान की संतुष्टि। सम सिद्धिर हरि तोषणम, यही संन्यास का मूल बीज है, और जब हम उसको अपनाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और वो विरक्ति जो है, ये संन्यास की प्रवृत्ति जो है, ये भगवान को अर्पण करने लायक रहेगी, इट इज ऑफरेबल टू लॉर्ड। बाकी सारी विरक्ति जो है हो सकता है हमारे सम्मान को बढ़ाने के लिए आवश्यक हो सकती है। ठीक है, तो आखिर में एक ही बात बताना चाहेंगे कि हमारा जो कृष्ण को संतुष्टि देने का जो आसक्ति है वो हमारे आनंद के लिए हो या ना हो, या हमारे हमको दुख देते हुए उसका अनुभव होता हो तो भी चलेगा, लेकिन कृष्ण के लिए खुद के दुख के साथ में, खुद के सुख के साथ में अनुकूल रिजल्ट मिलेगा या ना मिलेगा, ये सबको छोड़ते हुए, जैसे गोपियों का भाव चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, आश्लिष्य वा पादरता हम नष्ट मां, नष्ट भी हम हो जाएंगे फिर भी कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्य करते रहेंगे। यही हमारे जीवन का सार है, और जब तक हम इस सार के स्तर पर अपने जीवन को चला रहे हैं तब हमारा जीवन जो है सर्वश्रेष्ठ संन्यास की अवस्था में। चाहे हमारे पास बहुत सारा धन हो या कुछ भी धन न हो, हमारा आरोग्य संपन्न हो या हम रोगी हों, या हम बहुत बड़े व्यक्ति हो या बहुत तुच्छ व्यक्ति हो, बहुत सुंदर व्यक्ति हो बहुत कुरूप व्यक्ति हो, जीवन की हर विरोधी अवस्था में अगर हम केवल एक तत्व को अपनाएंगे कि हमें भगवान को संतुष्ट रखना है, तो हो सकता है कि इस अध्याय का सार हम समझे, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर बैठ कर आपको बता रहा हूँ इसलिए मुझे सब कुछ पता है, मेरा जीवन उस स्तर पर है, नहीं। आप सब लोगों की कृपा प्रार्थना की आवश्यकता है कि हम भी उस स्तर पर जीने का प्रयास करने में सफल रहें, और हो सकता है कि हम प्रयास करेंगे और असफल रहें, लेकिन फिर भी अपने प्रयास को बनाए रखेंगे इस स्तर पर जीने के लिए, उस प्रयास को भगवान स्वीकार करेंगे। ये मंजूर जरूरी नहीं है कि हम हर प्रयास करेंगे इस जीवन में तो उस प्रयास का फल मिलना ही चाहिए, तब भी हम मानेंगे कि ये संतुष्ट हो गए कि सफल हो गए। हो सकता है हमारे जीवन भर के हर क्षण के प्रयास में हम असफल ही रहे, असंतुष्टि रहे अपने स्तर पर, लेकिन हमारे प्रयास को हमको जारी रखना चाहिए। 100% अटेम्प्ट इज अवर रियल सक्सेस, क्योंकि कृष्ण भगवान जब चाहे तब उस प्रयत्न को फल दे सकते हैं, वो उसमें इंडिपेंडेंट है, वो उनके हाथ में है। लेकिन हमारा फर्ज है कि ऐसे संन्यास के बीज को जो अर्जुन को भगवान ने 18वें अध्याय समझाया, यहाँ पर इस 7वें स्कंद के 13वें अध्याय में प्रभुपाद समझा रहे हैं, नारद मुनि समझा रहे हैं इस तत्व को, उस बीज को अपनाने के लिए सतत प्रयत्न करते रहना, ये हमारा यश है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई किसी का प्रश्न है? हाँ प्रभु जी,
आपने बताया कि कोई हमारे उलझन है, हमें कोई समझ नहीं पाते तो हम शिक्षा गुरु के पास जाना चाहिए सवाल पूछने के लिए, तो शिक्षा गुरु कैसे सवाल का जवाब दे सकते, इसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए?
इनका प्रश्न है कि हमने कहा कि अगर कोई सुविधा दुविधा होती है मन के अंदर तो शिक्षा गुरु के पास जाना चाहिए, तो वो शिक्षा गुरु के क्या गुण है, है ना, क्या क्वालिफिकेशन है उनका जिसके पास हम जा सकते हैं? शिक्षा गुरु का मतलब है कि जो हमें हमारे भक्तिमय जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वो हमारे से वरिष्ठ हैं, जो हमसे अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो स्वयं गुरु महाराज को प्रसन्न करने के कार्य में अपने आप को लिप्त रखते हैं, वो शिक्षा गुरु है। और दीक्षा गुरु एक होता है जो हमारे लिए जिम्मेदारी को स्वीकार करता है भगवत धाम में ले जाने के लिए, लेकिन शिक्षा गुरु अनंत हो सकते हैं, जो हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो शिक्षा गुरु के पास उस व्यक्ति के पास आपको जाना चाहिए अगर आपकी दुविधा होती है, इस पर आपको श्रद्धा है कि वो आपके लिए हित चाहते हैं, वास्तव में वो आपके हित चिंतक हैं। दूसरा, वास्तव में उनका जीवन जो है उदाहरणीय है, एग्जाम्पलरी है, कि वो अपने जीवन में हमको उदाहरण दे चुके हैं कि स्वयं भी संकट के समय पर भगवान की भक्ति में ही रहे और उन्हें स्वयं अपने सीनियर से एडवाइस लेकर संकट के साथ साथ भी भगवान की सेवा करने में वो प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ही योग्य है शिक्षा गुरु बनने के। केवल कुछ साल अधिक हमारे से होने से या कुछ ग्रंथ अधिक पढ़ने से या कुछ काम करने से या कोई हमारे से अधिक अच्छे पोस्ट पर मंदिर में काम करता है, वो प्रेसिडेंट है, कोई कोई कमांडर है, तो वो शिक्षा गुरु होने के योग्य होगा ऐसे जरूर नहीं है। वो व्यक्ति शिक्षा गुरु है जो अनुभूति में रियलाइजेशन के स्तर पर हमसे आगे हैं, भगवान की भक्ति में जिसने साधना में प्रयास किया हुआ है, उससे हमको मार्गदर्शन देना चाहिए, मिलना चाहिए। और वो व्यक्ति अगर योग्य होगा तब भी हमको सही आदेश तब मिलेगा, सही उपदेश और मार्गदर्शन तब मिलेगा जब हमारी इच्छा प्रामाणिक हो। इसलिए शिक्षा गुरु के पास जाने के पहले अपने मन को टटोलिए कि हमारे मन में क्या ये प्रश्न पूछने के पीछे कोई भौतिक लाभ का हेतु है क्या, कोई खुद के लिए कोई हेतु है क्या इसके अंदर। वो अगर नहीं है और आप प्रामाणिक प्रश्न कर रहे हैं तो शिक्षा गुरु से आपको अनुकूल यानी कि भगवान उसके मुख से तब बोलेंगे जब आपके हृदय में प्रामाणिक इच्छा और प्रश्न होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजामि हम। जब आपके मन में प्रामाणिक भावना होगी तब भगवान उसके मुख से बोलेंगे और आपको गाइडेंस देंगे। क्योंकि हो सकता है कभी आपके गुरु महाराज परदेश में होंगे, कभी और कहीं होंगे, तो शायद प्रत्यक्ष मिलने का आपको और पूछने का प्रश्न मौका नहीं मिलेगा। तो आपको भगवान से पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं इस भक्त के पास जा रहा हूँ, मेरे मन में मैं प्रामाणिक इच्छा रखता हूँ, हो सकता है मुझे पता ना हो मेरे मन में कोई गलत किंतु आपको पता हो, कृपा करके उसको आप संभालिए और मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मुझे आप उसका जवाब इस भक्त के मुख से दीजिए, प्रार्थना कीजिए। फिर उस भक्त के मुख से भगवान बोलेंगे और वो आपके लिए कड़वा भी होगा तो आप उसको स्वीकार कीजिए। अगर आपने प्रार्थना किया है श्रद्धा से और जवाब आपको अनुकूल, आपके लिए अनुकूल नहीं मिल रहा है, आपके मन के लिए अनुकूल नहीं मिल रहा है, फिर भी उसको आप स्वीकार कीजिए। ठीक है प्रभु, और कोई प्रश्न है किसी का? यस, समझ में नहीं आया प्रश्न। हो सके तो ऐसा प्रश्न करो जो इस कथा से संबंधित हो, दैट इज बेटर। इस विषय के रूप में अगर प्रश्न हो तो अनुकूल रहेगा। यस रोहित जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अल्टीमेटली आप जो कुछ कर रहे हैं अभी, आपने जो कुछ अपना रूप बना के रखा है और पहन रहे हैं, ये सही है कि गलत है, ये आपके मन की भावना ही हो सकती है जो सही है कि गलत आप समझ सकते हैं। अगर आपके मन में वास्तविक रूप में ये भावना है कि मैं ऐसा वेश धारण करके बहुत लोगों को प्रचार करके उनको भक्त बनाऊंगा, अगर आपके मन में सच में ये अगर ये भावना है तो ये सही है। लेकिन आपके मन में अगर ऐसी भावना है कि चलो मेरा मन में भी सुप्त इच्छा था ऐसा वस्त्र पहनने का, तो मैं इस बहाने इसको पहन लूँगा और कुछ कुछ प्रचार के लिए कार्य करूँगा ताकि मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूँ, तो फिर वो गलत है। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हो। इफ इट इज़ इन योर हार्ट सिंसियरली यू डोंट लाइक इट बट यू आर डूइंग इट ओनली फॉर प्रीचिंग सेक, देन इट इज़ राइट। बट यू फील कि आई ऑल्सो लाइक इट वेरी मच एंड आई हैव अ रीज़न टू डू दिस, यू नो। जैसे कि अमेरिका में कुछ भक्त लोग जाते हैं ना, तो उनको अमेरिका का जो निवास है, वहाँ की सुख सुविधा जो है, बहुत अच्छी लगने लगती है, फिर वो वहां रहने के लिए बहाना ढूंढते हैं और फिर प्रचार कार्यक्रम चालू करते हैं, प्रोग्राम चालू करते हैं। फिर गुरु महाराज पूछते हैं कब वापस लौट रहे हो? महाराज मैं हाउ कैन आई कम बैक, सी सो मेनी डिवोटीज आई एम प्रीचिंग, दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा, देयर इज अ प्रोग्राम इन माय हाउस, इफ आई गिव अप ऑल दिस थिंग एंड गो टू इंडिया देन हाउ दे विल बिकम डिवोटीज। और बाद में फिर किसी भक्त को उन्होंने प्रामाणिकता से बताया है, एक्चुअली स्पीकिंग वी आर सो अटैच्ड टू अमेरिकन लाइफ दैट नाउ वी आर फाइंडिंग रीजंस टू कंटिन्यू स्टेइंग ओवर देयर। सो उनका मूल भाव क्या है? साई भाव, अटैचमेंट टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड दे आर जस्टिफाइंग इट विद सम डिवोशनल एक्टिविटी, ट्राइंग टू कवर इट अप। हमको वो क्या देखना है? हमको देखना है कि इवन इफ यू आर अटैच्ड, वी वॉन्ट टू गिव अप आवर अटैचमेंट फॉर द सेक ऑफ सर्विस। तो आपका उत्तर आपको खुद को ढूंढना है। इफ यू आर ट्रूली अटैच्ड टू कन्वर्टिंग दोज कंडीशन सोल्स टू बिकम डिवोटीज ऑफ कृष्णा, देन यू कंटिन्यू वॉट यू आर डूइंग। बट स्टडी योर माइंड एंड एनालाइज, इज इट ट्रू और नॉट? इफ इट इज नॉट ट्रू, बोल्डली गिव अप ऑल दीज थिंग्स एंड कम इन द डिवोटी ड्रेस। सॉरी, माई वे ऑफ आंसरिंग इज वेरी स्ट्रेट, यू नो, आई डोंट वॉन्ट टू हाइड एंड सीक। यस यस, हो सकता है कि आप कभी कभी सीनियर डिवोटर्स को अपने गाइडेंस भी लीजिए, उनसे गुरु महाराज को पूछिए और उनके गाइडेंस भी करते रहिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होगा, जो भी आप अभी आप कर रहे हो, अगर उसको आपको रिजल्ट चाहिए उनको भक्त बनाने के रूप में, हाँ अपने लिए नहीं उनके लिए, तो रिजल्ट तब आएगा जब गुरु महाराज की अनुमति होगी, उनकी कृपा होगी, तो आपके ये भेष में आप जो भी करेंगे उसके रिजल्ट आपको निकलते हुए नजर आएंगे, भक्त बनेंगे आपको देख कर लोग और प्रेरणा लेंगे उनसे। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? आई थिंक टाइम इज अप, एक लास्ट प्रश्न ले सकते हैं। यस प्रभु जी, प्रश्न क्या आपका? हाँ, तो प्रश्न क्या आपका? जो भी गुरु महाराज के आदेश का पालन करता है और उस आदेश को पालन करने में अपनी सारी सुख दुख सुविधाएं, अपनी इच्छाओं को त्याग करता है, वो कभी गुरु भोगी नहीं हो सकता है, वो गुरु सेवी है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ण करने के लिए गुरु के द्वारा दिया हुआ सुविधा का लाभ लेता है, वो गुरु भोगी है। बट इस जीवन में रहने के समय आप जानते हो ना, भगवान ने हमको क्या बताया है, ईशा वास्तव इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्ति न भुंजिता। मतलब क्या है, इस जीवन में रहते हुए इस दुनिया की हवा, इस दुनिया का पानी और शरीर को चलाने के लिए भोजन लेना आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य भी, आपका अधिकार भी है वो, लेकिन उससे अधिक लेना आपका अधिकार में नहीं है, या किसी और के अधिकार का अपने अधिकार में लेना भी आपको अधिकार नहीं है। ठीक है, तो उस तरह से भक्ति जीवन में आप आएंगे तो हमको शरीर चलाना है, हमको भोजन भी देना पड़ेगा, रात के सोने के लिए जमीन भी लगेगी आपको, बिस्तर लगेगा, पंखा भी लगेगा या कुछ भोजन लगेगा, तो ये लेना कोई अपराध नहीं है। लेकिन ये लेने के पश्चात, शरीर को चलाने के पश्चात हमारा सारा तन मन धन, हमारा काया वाचा मने अगर भगवान की और गुरु महाराज की सेवा में समर्पित है तो वो गुरु भोग नहीं है, इम्पॉसिबल। सो अपनी चेतना पे डिपेंड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, अभी मैं तुम जो बैठ कर प्रसाद पा रहा हूँ, मेरा ध्यान जलेबी के ऊपर जा रहा है, मेरा ध्यान बार बार उसके बजाय जो मुझे पसंद है, तो वो भोग है। अगर आपकी थाली में जो परोसा दिया गया है वो भगवान का प्रसाद लेकर आप ग्रहण कर रहे हैं शरीर को पालन करने के लिए, तो फिर वो गुरु भोग नहीं है। इसलिए अगर कोई भी वस्तु अगर गुरु भोग है, कि गुरु त्याग है या गुरु सेवा है, या आपकी चेतना तय कर सकती है, व्हाट इज इन योर हार्ट। जब ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा कि रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति, हाँ ये हमारे सबका जीवन का सार है। हाँ, ये जैसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर कथा बैंड के रूप में प्रचार करना या सन्यासी बनकर और प्रचार करना, इसके पीछे अगर भाव यही है कि मुझे सब लोगों को रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरणों में लाना है, कृष्ण भगवान के चरणों में लाना है, तो तो ये गुरु सेवा है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई कथित हेतु है मन में, कोई मोटिवेशन है, तो फिर वो गुरु सेवा नहीं है, वो गुरु भोग है। इसलिए हमको हर भक्त को, चाहे वह मंदिर में या बाहर से आते हैं या मंदिर में रहते हैं या फुल टाइम रहते हैं या जो भी कर रहे हैं, हमको सबको अपनी चेतना को टटोलना चाहिए कि व्हाट आर वी, हम लोग यहाँ पर किस लिए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि हम लोग मंदिर में आते हैं तो मंदिर का नियम पालन करने को आते हैं और मंदिर का नियम पालन करके भगवान की सेवा करने को आते हैं। और जब तक गुरुजी का आदेश वो आपके लिए है कि मंदिर में रहो और ये करो, तो आप गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, उसमें कहाँ भोग है। लेकिन यहाँ पर अगर भोग सेवा करते हुए हम लोग रोज गुलाब जाम खा रहे हैं और वजन बढ़ा रहे हैं, तो भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं कि फैट पीपल आर नॉट माई डिसाइपल्स। तो ये सब सूक्ष्म बातें हैं, ये मोटी मोटी बातें नहीं, ये सूक्ष्म बातें हैं। हमको अपने हृदय में हमेशा टटोलना चाहिए ब्रह्मचारी लेवल पे, सन्यासी लेवल पे, गृहस्थ लेवल पे, कि क्या हम वास्तव में भगवान की सेवा में है, क्या हम वास्तव में भगवान की प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर जीवन जी रहे क्या। अगर उत्तर है तो हमारा जीवन गुरु सेवा है, गुरु भोग नहीं है। हाँ, इज इट क्लियर प्रभु जी? आई वॉन्ट टू, मतलब कल भी इसकी चर्चा हो रही थी, मेरी ऐसी एक प्रामाणिक इच्छा है कि सब लोगों को पता होना चाहिए कि गुरु सेवा और गुरु भोग में क्या अंतर है। जब हमारे स्वार्थ के लिए गुरु द्वारा दिए गए सुविधा का हम लाभ लेंगे तो वो गुरु भोग है, और गुरु के द्वारा दी गई सुविधा का उपयोग पूरी तरह से भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गुरु सेवा ही है। अरे, अपनी चेतना को हमको चेंज करना है, बस दैट्स ऑल, दैट इज अ चैलेंज। तपस्या यही है, विरक्ति हुई कि अपने भोग की प्रवृत्ति को त्याग करके गुरु को प्रसन्न करने की प्रवृत्ति को अपनाना, यही गुरु सेवा का रहस्य है। थैंक यू वेरी मच। श्री राधा गिरिधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्र माई की, श्रील प्रभुपाद की, विधायक गौ प्रेमानंदी।